हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद त्रयोदशी के आज के इस शुभ अवसर पर आप सब भक्तों का स्वागत है। परसों हम चर्चा कर रहे थे के भागवत के अनुसार भागवत में खुद ही वर्णन है और श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में भी वर्णन करते हैं कि भागवत का श्रवण क्यों और कैसे करना। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जान जाता है वो इस शरीर छोड़ने के बाद इस संसार में नहीं आता बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भागवत में जब नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत गोस्वामी से विनती करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं कि आप जीव समाह सूत जीव समाह शाश्वती विशदम यशः, दो चीज कहते हैं, आप दीर्घ आयु जिए और आपका यश बहुत फैले। दीर्घ आयु क्यों जिए? ताकि आप हरि कथा कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति चाहिए संसार में। तो आप बहुत साल जिए और ये कथा करते रहे और आपका यश फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। यस्त्वं शमशति कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हिनः, क्योंकि आप कृष्ण कथा कर रहे हो जो बद्ध जीवों के लिए एक अमृत के समान है। कृपया आप ये कथा करते जाइए। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए जितना ज्यादा हम भगवान के दिव्य कार्यों के बारे में, क्रियाओं के बारे में श्रवण करते हैं, जिस तरह वो गीता और भागवत में वर्णन हुआ है, उतना ही भगवान के दिव्य स्वभाव को हम जान सकते हैं, इस ट्रांसेंडेंटल नेचर। और इस तरह से एंड डज मेक डेफिनेट प्रोग्रेस ऑन द पैथ बैक होम बैक टू गॉड। निश्चित रूप से हम भगवत धाम की ओर प्रगति करेंगे। तो दो चीज यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, दो चीज होगा अगर कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो, दो चीज होगा। एक, कार्यकलापों को, भगवान के कार्यकलापों को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से जो भगवान के दिव्य स्वभाव हैं, गुण हैं, भगवान के गुण, वो गुण को हम समझ पाएंगे। और जितना हम भगवान के गुण को समझेंगे उतना भगवान से आकर्षित होंगे, जितना भगवान से आकर्षित होंगे उतना हम उनकी शरण जाएंगे, और जितना हम उनकी शरण जाएंगे उतना हम प्रगति करेंगे। भागवत में वर्णन है कि प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतस्युर तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुघासम, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च त्रिक एक कालः। भक्ति और परेश अनुभव, भगवान की कृपा अपने जीवन में महसूस करना, परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च, और जो भी भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है उससे अपने आप विरक्ति। त्रिक एक काल, तीनों चीज अपने आप एक साथ हो जाता है प्रपद्यमानस्य। जितना हम शरण जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते, तो प्रपद्यमानस्य यथा, किस तरह से, जैसे अष्टनतः, जैसे कोई खाता है तो तीन चीज होता है, जितना उसको भूख लगा है। भूख लगने पर जब आदमी खाता है तो तीन चीज एक साथ होता है, तुष्टि, जितना भूख ज्यादा है उतना खाना उसका स्वाद बढ़ता है। जब भूख नहीं है तो अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भी स्वाद नहीं है, पर भूख है तो तुष्टि, स्वाद बढ़ता है खाना का। भूख होना चाहिए, भूख अच्छा होगा तो फिर स्वाद बढ़ेगा, पुष्टि, और भूख है तो खाते ही तुरंत हमको शक्ति अनुभव होता है। ये खास करके जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन महसूस करते हैं कितना जल्दी पुष्टि प्रदान करता है खाद्य। पूरे दिन अगर उपवास किए हैं और बाद में शाम को आरती करना है, बोलने का ताकत नहीं, नाचने का तो दूर की बात, खड़े होने का ताकत नहीं, पर अगर थोड़ा सा एक गिलास शरबत ले लिया, सिर्फ वो जिह्वा में स्पर्श हुआ ऑलरेडी ताकत आ जाता है, पुष्टि। तो इस तरह से खाद्य जो है अपने आप पुष्टि प्रदान करता है, और क्षुद पायो, और जितना हम खाते जाते हैं उतना भूख मिटता जाता है। तो यहां तुष्टि की तुलना की गई है। अगर भूख है, हर एक व्यक्ति भूखा है, कृष्ण के पीछे भूखा है, प्यासा है, और इस भौतिक संसार में संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, ये सोचता है ये संबंध मुझे संतुष्टि देगी, तुष्टि पुष्टि सब देगी हमें, पर भौतिक संसार के संबंध मृग तृष्णा जैसे होने के कारण वो संबंध हमें आत्मा को, आत्मा की जो भूख है प्यास है वो मिटा नहीं सकते। हर एक व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है, पर कृष्ण को न जानने के कारण इस भौतिक संसार में हर एक चीजों से संबंध बढ़ाकर उसका आस्वादन करने का प्रयास कर रहा है। पर जैसे जैसे प्रपद्यमानस्य शरण जाते हैं तो तुष्टि, ये तुष्टि मतलब स्वाद बढ़ना। स्वाद बढ़ने का मतलब क्या, भक्ति में स्वाद बढ़ रहा है। कभी कभी लोग पूछते हैं मैं शरणागत हो रहा हूं इसका परीक्षा क्या है, प्रभु जी इतने साल से मैं जप कर रहा हूं प्रगति हो रहा है कि नहीं, ऐसे बोल रहे अभी बोला है इसीलिए मैं कर रहा हूं, प्रगति हो रहा है कि नहीं। तो ये थ्री पॉइंट टेस्ट है हमारा, ये परीक्षा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं प्रगति हो रहा है कि नहीं, मेरे सर के पीछे ऐसा तेज निकल रहा है क्या, किसी को पूछने की जरूरत, फोटो लेके देखने की जरूरत नहीं, फोटो में तेज दिख रहा है क्या, जैसे महाप्रभु के पीछे दिखता है ना ऐसा थोड़ा इफल्जेंस, जाके आईने में देखने की जरूरत नहीं या किसी से पूछने की जरूरत नहीं कुछ लग रहा है क्या। ये थ्री पॉइंट टेस्ट है ये। प्रपद्यमान क्यों प्रपद्यमान, क्योंकि जितना हम शरण जाते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते, भगवत धाम की ओर जा रहे हैं और माया से दूर हो रहे हैं, तो परीक्षा अपने आप देख सकते हैं। खा रहे हो तो किसी को बोलने की जरूरत है कि भाई बहुत बहुत हो गया मत खाओ, अपने आप बोलता आदमी झाला कैसे, किसको मालूम पड़ा, उसको खुद को समझ में आ जाता है। इसी तरह से किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद देख सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं कि खा रहे हैं कि नहीं, खाद्य जा रहा है कि नहीं। तुष्टि, तुष्टि मतलब भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, जैसे एक भूखा आदमी कैसे खाने को ढूंढता है और खाने को कितना प्रेम से खाता है वो, तो एक हमें देखना चाहिए कि कितना हमें भक्ति के कार्यकलाप आस्वादन, आस्वाद, स्वाद बढ़ रहा है, टेस्ट, तो ये पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट है हमारे टेस्ट का, टेस्ट मिल रहा है कि नहीं। कितने लोग थोड़ा भूख लगता है तो कहां कहां जाने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार, जहां खाना मिलता हो कितना किलोमीटर भी दूर हो जाने के लिए तैयार, खास पर्टिकुलर एक स्वाद लेने के लिए। तुष्टि और पुष्टि, पुष्टि मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं, ताकत बढ़ रहा है। सही चीजों को हां बोलने का ताकत बढ़ रहा है और दूसरे चीजों को, प्रतिकूल चीजों को ना बोलने का ताकत बढ़ रहा है। और जब खाते हैं नरिशमेंट का एक दूसरा है संतुष्टि, जितना हम खाना खाए उतना संतुष्ट है। और तीसरा क्षुधपायो, क्षुधपायो मतलब भूख दूर हो रहा है, तो कौन सा है, भक्ति परेश अनुभव। हां पुष्टि का, पुष्टि मतलब खा रहे हैं और पेट भर रहा है, इसका सबूत क्या है, परेश अनुभव, भगवान के कृपा या उनका हाथ हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं हर क्षण, जो कुछ भी होता है तुरंत हम कहते हैं भगवान की कृपा से ही हुआ है, होने दो चलेगा। हर एक चीज के पीछे, हर एक परिस्थिति के पीछे भगवान के हाथ को देखते हैं हम लोग, परेश अनुभव, हर क्षण हम अनुभव करते हैं कृष्ण की कृपा को, कृष्ण के प्रेम को। तो ये पुष्टि और क्षुधपायो, भूख दूर हो रहा है, भूख मिट रहा है, वो कैसे, विरक्ति अन्यत्र च, जो भी कृष्ण के सेवा में शरणागति में प्रतिकूल है, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, उन चीजों में रुचि जो है, जो पहले बहुत होता था अभी थोड़ा कम हो रहा है। पूरी दुनिया भूखी है किस चीज के लिए, धनम जनम सुंदरीम कविताम, पूरी दुनिया भूखी है, तो हम भी भूखे, पर वो भूख मिट रहा है, तब हम समझ लेंगे कि खाना ठीक से अंदर जा रहा है तो भूख मिट रहा है। तो इस तरह से ये दो चीज प्रभुपाद कहते हैं कि एक भगवान के दिव्य जो गुण हैं वो समझने लगेंगे, आसक्ति बढ़ेगी, शरणागत होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये दूसरे तीन चीज होने लगेंगे, डेफिनेट प्रोग्रेस बैक होम बैक टू गार्डन। तो और भागवत के 12वें स्कंद में उस दिन हम चर्चा किए कि किस प्रकार भगवान खुद सुत गोस्वामी खुद कह रहे हैं कि भगवत गुणोदयम, जब हम सुनते हैं भगवान अधोक्षज उनके जब वार्ता को सुनते हैं, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम, भगवत गुण उदयम। और जितना हम श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं को, भगवान की जो गुण है वो गुण का सिंधु है, उसका एक बिंदु हमारे में भी प्रकट होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति धावतो बहि। और ये गुण क्षणिक गुण नहीं है, भौतिक संसार में हम गुण दिखाने का प्रयास करते हैं, हम बड़े नम्र हैं, हम बड़े सज्जन हैं, हम बड़े इंद्रियों को संयम किए हैं, पर चार दिन के लिए करते हैं, पांचवां दिन जो नियंत्रण किया था उसका कॉम्पेंसेट पूरा हो जाता है। वो गुण जो है भगवत गुण नहीं है, वो सिर्फ बाहर से मनोरथे ना सती, मन के स्तर पर है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि ये गुण दिखाएंगे तो लोग हमको गुणगान करेंगे, इसीलिए हम वो गुण को कृत्रिम रूप से प्रकट कर रहे हैं। पर अभी तक इसीलिए कभी कभी वो हिपोक्रेसी लगता है, दिखावट लगता है, क्यों, क्योंकि बाहर से प्रयास कर रहे हैं, अंदर से है नहीं, तो टिकता नहीं है वो। वो लोमड़ी को एक बार शेर का चमड़ा मिल गया, शेर बन के, तो लोग सम्मान दे रहे थे, वाह शेर आया शेर आया शेर, घूमता था। पर जिस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखा तो उसका स्वभाव बाहर आ गया, गला ऊपर करके तो लोमड़ी जैसा चलाता ये शेर, तब सबको पता लगा। तो इस तरह से कृत्रिम रूप से हम दिखा सकते हैं हमारे ये गुण, पर मनोरथ है ना सती, मानसिक स्तर पर है। जैसा कंस का हुआ, अच्छे तरह से दिखा रहा था मैं प्रेम करता हूं देवकी से, पर जैसा आकाशवाणी हुआ तुरंत अपना स्वरूप बाहर आ गया उसका। तो हम भी कुछ दिखाते हैं पर आकाशवाणी के रूप में कुछ उत्तेजित वस्तु आ गया हमारे काम को या क्रोध को या लोभ को या मोह को उत्तेजित करने वाला, तो फिर गला उठा के शुरू हमारा मूल स्वरूप। या कंस जैसा तलवार निकालते हैं और जिस वस्तु से प्रेम दिखा रहे थे उसको मार के खत्म करने के लिए तैयार। तो भगवत गुणोदयम जब तदेव सत्यम, और ये गुण सत्य है, निताय पद निताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य धरोनि निताय चरण दुखानि। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते निताय चरण सत्य तदेव सत्यम। ये जो कथा है ये कथा नित्य लीला है, ये अभी भी चल रहा है, ये चैतन्य लीला भागवत लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी भी चल रहा है ये, और अप्रकट रूप में हर जगह है वो चल रहा है, सिर्फ उसमें प्रवेश करने चाहिए हमको बस। तदैव सत्यम, दूसरी लीलाओं का आदि और अंत होता है पर कृष्ण लीला का आदि और अंत नहीं है, ये अनंत है, ये शाश्वत है। तदैव सत्यम तदुहैव मंगलम, यही सचमुच में मंगलमय है हमारे लिए। तदैव पुण्यम, और सबसे बड़ा पुण्य यही, इससे बढ़कर कोई पुण्य काम, कथा सुनने क्यों नहीं आए, नहीं पुण्य काम करने गए थे कुछ और चीज, कौन सा बड़ा पुण्य है। शुण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा जो है पुण्य श्रवण कीर्तन, सबसे बड़ा पुण्य वही, उसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। भगवत गुणोदयम, भगवत के गुण जो है हमारे अंदर भी उदित कर देता है। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जिस हद तक अकिंचन भक्ति होती है, अकिंचन मतलब और किसी का आश्रय नहीं, माम एकम शरणम व्रज, उस हद तक सारे गुण जो देवता में गुण कहां से आता है, सब गुण कृष्ण से ही आता है, गुणों के खान है वो। तो इस तरह से भगवत गुणोदयम, और इसीलिए जैसे मैं उदाहरण दिया पूतना का जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया एक लीला की, लीला क्या था, पूतना का वध किया, पर इसके द्वारा एक गुण भगवान का खास, बहुत सारे गुण उसमें से निकल आते हैं उभर आते हैं क्योंकि गुणों के खान है वो, पर एक गुण जो महान भक्त एक अधिकृत व्यक्ति ने उसको कहा है वो है उद्धव जी। उद्धव ने तृतीय स्कंद में इनको कहा विदुर को, अहो बकीयम स्तन कालकूट कम वा दयालु शरणम, तो दयालुता भगवान का ये उभर आता है और धीरे 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 समझ में आएगा कितने दयालु हैं भगवान, तब फिर हम उनकी शरण लेने की प्रेरणा मिलेगी, और बाद में इतना प्रेम हो जाएगा कि पुंडरीक विद्यानिधि के समान। पुंडरीक विद्यानिधि पूरा पूतना के रिवर्स, पूतना बाहर से साक्षात लक्ष्मी लग रही थी, अंदर से राक्षसी, और पूरा उल्टा उसका पुंडरीक विद्यानिधि। देखने में पूरा अच्छे तरह से सज के तेल लगा हुआ आया था और चामर रो रहे थे, रेशम के कपड़े पहने हुए थे और हुक्का हाथ में, हुक्का था और पान चबा रहे थे। ऑफकोर्स इसका अनुकरण नहीं कर सकते हम लोग, केवल पुंडरीक विद्या नहीं थी जो गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु है। और वो क्या कर रहे थे, दोनों साइड में आईना था, बार बार आईना को देख के अपना बाल सेट कर रहे थे। वो मुकुंद उसी गांव का था, पुंडरीक विद्यानिधि के गांव का था, चित्तग्राम। तो कहा गदाधर पंडित को, कहा जो बड़ा वैरागी थे गदाधर पंडित, उनको कहा कि मैं आपको महान भक्त से मिलाने, और भक्तों से मिलने बहुत गदाधर पंडित इच्छा थी, कोई भी महान भक्त आता है तो उनसे मिलने। तो गदाधर पंडित आए और देखे कि कुछ बोले नहीं ऑफकोर्स मुकुंद को, बोले कहाँ ले आया यार किधर ले आया, भक्त को मिलाने आया था, ये तो बड़ा आसक्त व्यक्ति लगता है, भौतिक आसक्त व्यक्ति लगता है, और लोग चामर डुला रहे हैं उसको और बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। मुकुंद समझ गया कि ये बाहर से देख रहा है, इसे एक झलक दिखाता हूं क्या है पुंडरीक विद्यानिधि। तो सिर्फ मुकुंद, बड़े सुंदर मुकुंद गाते बहुत अच्छे थे, गाने लगे वो सेम यही श्लोक, अहो बकीयं स्तनकालकूटम। और जैसे ये श्लोक बोले पागल जैसे, उस सारा चीज सब तोड़ फोड़ के गए, 10 लोग उनको नियंत्रण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भागवत श्रवण से इतना प्रेम था उनको, आसक्ति थी कृष्ण के प्रति, कि कोई भी उससे संबंधित चीज सुनते थे। गौरांगा बोलिते होबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बोबे नीर, आर कोबे निताई चांद करुणा होइबे, संसार वासना मोर कोबे तुच्छ होबे। गौरांगा, सिर्फ गौरांगा नाम सुन के पुलक शरीर पुलक पुलकित हो जाना चाहिए, हरि हरि बोला तो आंखों से आंसू आना चाहिए। कब होगा ये? ऑफकोर्स ये नित्यानंद प्रभु की कृपा होने, निताय चांद करुणा होई बे, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तब होगी। तो इस तरह से हाँ, ये कैसे प्राप्त किया जाए, ये कैसे प्राप्त किया जाए, ये तरीका वर्णन है भागवत में, भक्तिरसामृत सिंधु में, कि अनुकूल्य से संकल्पो, अनुकूल चीजों को स्वीकार करो। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है अनुकूल्य से, क्या अनुकूल है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, माधव तिथि भक्ति जननी परम आदरे कोरी। तो इस तरह से चैतन्य भागवत में एक अनुकूल चीज बताया गया है, वो कहते हैं विष्णु और वैष्णव की जो तिथि है, उनका आविर्भाव, उनके कार्यों का कुछ दिन, जो वैष्णव कैलेंडर में हम देखते हैं। तो कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद जन्म माघ शुक्ला त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। नित्यानंद जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी, यानी आज के दिन, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी, फाल्गुनी महीने के, यानी मार्च अप्रैल मार्च में होता है, पूर्णमासी पूर्णिमा के दिन। सर्वयात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि सर्वशुभ लग्न अधिष्ठान है इति। सर्वयात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि, ये दो पुण्य तिथि जो है, महाप्रभु का आविर्भाव और नित्यानंद प्रभु का, ये दुई पुण्य तिथि सर्वयात्रा मंगल, सब रूप से ये मंगल है। क्यों? सर्वशुभ लग्न, इस दिन हम लग्न देखते हैं ना, हर एक चीज का समय देखते हैं, अनुकूल है क्या नहीं है, राहु है कि ये काल है कि ये काल। बोले ये दिन जो है सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं पूर्ण रूप से, इसीलिए ये मंगल सबसे मंगल दिन है। सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इति, पृथ्वी पर पूरे दिशाओं में आकाश में सब चीज मंगल हो जाते हैं ऐसे दिन। एते के ए दुई तिथि करिले सेवान, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। एते के ए दुई तिथि, इसलिए ये दो तिथि जो है करिले सेवन, इन तिथि की अच्छे तरह से सेवा करनी है। कैसे सेवा करना है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तीन तरीके बताए। एक, उस दिन उपवास करना है, उपवास करके सोना नहीं है, उपवास करके ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के स्मरण में, नाम स्मरण, उनके गुण, उनकी लीला। और तीसरा, अच्छे तरह से उत्सव मनाना उस दिन, पूरा प्रयास अपनी ओर से यथाशक्ति उनको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। जितना अच्छे तरह से हम मनाएंगे, दो चीज होता है, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। उस हद तक अविद्या, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में एक ये कहते हैं कैटलिस्ट, मतलब एक रिएक्शन, दो अगर रसायन मिलाते हैं तो एक प्रतिक्रिया होती है, उस होने में समझ लीजिए आधा घंटा लगता है, ये मिलाने के बाद आधा घंटे के बाद वो उबलने शुरू होता है, पर उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर वो डाल दिया तो आधे घंटे में होने वाला दो मिनट में होने लगता है। तो बोले ये तिथि ऐसे है, लाइट ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, करोड़ों जन्मों का प्रगति जो हो सकता है एक दिन के अंदर हो सकता है, हमारे ऊपर निर्भर है। इसे हम देखते हैं, कहा आप कहीं भी जाइए पवित्र स्थानों में, ऐसे दिनों में मंगल आरती हो या दूसरे आरती या उत्सव के अभिषेक का, वो सब हजारों हजारों लोग घुस जाते हो, जगह नहीं होता है, कहीं कहां से आते नहीं मालूम, पांच मिनट पहले कोई दिखता नहीं, पर ठीक समय पे जयपुर में मैं गया था, उस दिन इतने लोग आ जाते हैं, कहां से आते पता नहीं, और फिर होने के बाद गायब, फिर दोपहर को होता है या कुछ तो होता है, टाइम होता है वो आरती का, सब आ जाते कहां से।
ईश्वरेर जन्मतिथि जेहेन पवित्र, वैष्णवेर सेई मत तिथिर चरित्र।
जिस तरह से ईश्वर की जन्मतिथि बहुत पवित्र है, उसी तरह से वैष्णव की भी जो तिथि है वो भी उतना ही, उनका भी चरित्र उतना ही, वही महत्व है। तो इस तरह से यथाशक्ति हम प्रयास कर रहे हैं, और आज के दिन जितना हो सके भागवत का श्रवण, गीता और भागवत। तो आप बोलेंगे ये तो भागवत में तो ये कथा नहीं है, हाँ, पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य लीला जो है ये भागवत से अभिन्न है, क्योंकि भागवत है क्या, भागवत है क्या, भगवान उनके सारे अलग अलग अवतार, खास करके कृष्ण अवतार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं मृणयंती युगे युगे, और उनके जितने सारे अवतार हुए, तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंद में वर्णन है, वो सारे अवतार जब हुए तो उनके जो प्रमुख भक्त हैं उनके साथ प्रेममय आदान प्रदान, भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों का शुद्ध भगवान के प्रति प्रेम, और ये प्रेम का आदान प्रदान, यही भागवत है। इसीलिए बार बार चैतन्य भागवत में भी कहा जाता है कि आगे कोई व्यास आएगा और भी बताएगा इस लीला के बारे में। आगे व्यास आएगा और इसको और भी विस्तृत करेगा। बोले कैसे विस्तृत करेगा? बोले व्यास देव तो हो गए। बोले नहीं, भागवत चतुश्लोकी बस चार श्लोकों में दे दिया ब्रह्मा जी को भगवान ने, तो हम लोग क्यों चार श्लोक नहीं सुनते? चार श्लोक सुन के साथ में साक्षात्कार हो जाना चाहिए ना हमारा। तो वही चार श्लोक को उन्होंने नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास देव की सुनाया, व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को सुनाया। आज 18,000 श्लोक है वो। सचमुच में भागवत जो है वो अनंत है। वो एक एक का भी हम तात्पर्य पढ़ते जाते हैं, उसके ऊपर कोई व्याख्यान करते हैं अलग अलग आचार्य, सब आचार्यों की उस एक एक कथा का अगर आख्यान सुनेंगे वो, तो हम समझ सकते हैं कितना लंबा है वो। और भागवत में 11वें स्कंद में वर्णन है कलयुग के अवतार कौन है, उनका पूजा कैसा होगा, और वो कलयुग का अवतार जब हुए उसका वर्णन, वो भी भागवत है थोड़ा विस्तृत रूप। तो उस श्लोक का तात्पर्य है चैतन्य लीला कंप्लीट। इसलिए कृष्णदास गोस्वामी महाराज चैतन्य भागवत के ऊपर कहते हैं, ओरे मूढ़ लोको सुनो चैतन्य मंगल। पहले चैतन्य भागवत जो चैतन्य मंगल नाम से प्रसिद्ध था, पर बाद में जब लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा तब ये चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल, ओरे मूढ़ लोको सुनो चैतन्य मंगल। खास करके कलयुग में सब मूढ़ है, आप ये मत सोचिए हमारे लिए नहीं है ये। फिर चैतन्य महिमा जाते जानिवे सकल, अपने आप चैतन्य की महिमा समझ जाओगे सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ पढ़ते रहो। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। भागवत में जो व्यास देव ने कहा है कृष्ण लीला, चैतन्य लीला की जो व्यास है वो वृंदावन दास है। वृंदावन दास कोइला चैतन्य मंगल, यहार श्रवणे नाशे सर्वे सर्व अमंगल। सब अमंगल दूर हो जाते हैं। चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। चैतन्य भागवत सुनने से दो चीज होता है, एक चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, एक गौड़ी वैष्णव के अलावा काफी लोगों को लगता है महाप्रभु एक महान भक्त थे, कहीं अवतरित हुए, भक्ति क्रांतिकारी, भक्ति में क्रांति करने वाले महान आचार्यों में चैतन्य महाप्रभु एक इतिहास में आता है ऐसा। पर सही में उनकी महिमा जानना है, चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा। कृष्ण भक्ति का जो सिद्धांत है उसकी जो सीमा है, जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु में वार्तालाप हुई, संवाद हुआ, उसमें जो सीमा भक्ति की बताई गई है कृष्ण लीला, वो तीन के अलावा कोई जानता नहीं। श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, कोई चौथा व्यक्ति नहीं हुआ जो इसको जाने, ऐसा सिद्धांत की सीमा है। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु बांटने आए, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा, भागवते यत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखिया छेना इहा जानी करिया उद्धार। भागवते यति भक्ति सिद्धांत सार, भागवत का जो सारा सार है, लिखिया चेन इहा जानी करिया उद्धार। सारा भागवत का सिद्धांत आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसे पढ़ने से। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी अवन, सेहो महावैष्णव होय तत क्षण। बोले पाषंडी यवन भी अगर चैतन्य मंगल को सुनता है, सेहो महावैष्णव होए तत्क्षण, तुरंत उसी क्षण वो वैष्णव हो जाएगा। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कोई मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना कर ही नहीं सकता। जैसे व्यास देव कृष्ण के ही एक अवतार हैं, तो उनके द्वारा गोविंद भाष्य जब लिख रहे थे बलदेव विद्याभूषण, तो कह रहे थे कि मैंने नहीं लिखा, गोविंद ने मुझे लिखाया। कृष्णदास कविराज भी कहते हैं मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, आंख दिखता नहीं, हाथ हिल रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूं। चैतन्य जो लिखा रहे हैं वो काष्ठेर पुतली जहा कुह के नचाए, कहते हैं कहते दूसरी जगह वो भी कहते हैं वो मैं वही कह रहा हूं जो चैतन्य महाप्रभु बोलवा रहे हैं मुझसे, और वही मैं लिखते जा रहा हूं। श्रील प्रभुपाद भी एक बार कृष्णा बुक पढ़ने को बोले अपने शिष्य को, सुन रहे थे और उसका आस्वादन कर रहे थे, तो किसी ने पूछा आप तो लिखे हुए, उसको नया कैसा लग रहा है, बोले मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा। तो फिर बोले फिर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद क्यों लिखा आपने, लेखक एक ही भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखा है ना, बोले वो तो कलम का नाम है, मतलब नहीं उसको क्या कहते हैं, निमित्त, मैं निमित्त था, उसका नाम है बस, एक्चुअली कृष्ण ने लिखा मुझसे। तो एक चैनल बन जाते हैं हम लोग, माध्यम बन जाते हैं। तो
ऐसे ग्रंथ मनुष्य रचिते नारे, ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारिला संसार।
कोटि नमस्कार करना चाहिए वृंदावन दास के चरणों में, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना कर पूरे संसार का तारण किया है। तो आज इस ग्रंथ जो है चैतन्य भागवत, इससे एक कुछ प्रसंग लेकर उस पे थोड़ा प्रवेश करने प्रयास करेंगे, पूरे श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से अगर सुनेंगे। और ये सुनते वक्त आप सोचिए कि आप उस स्थान में हो, क्योंकि ये लीला चल रही है, आप उस स्थान में हो और मानो आपने कभी नहीं सुना ये लीला, पहली बार सुन रहे हो, कैसे सुनेंगे आप। तो आपको मैं एक कहानी बताता हूं, एक राजा था, अरे कौन आएगा अभी, राजा का क्या होगा, अभी रानी है कि नहीं उसकी, वो राजा की कितनी रानी होंगी, कितनी रानी, 3 रानियां, ओह अच्छा अच्छा, और क्या होगा, होगा कैसी थी रानियां, एक अच्छी थी, दूसरी बुरी थी, कई कई जैसी थी, कितना उत्सुकता रहता है। एक्चुअली एक भक्त के लिए, एक शुद्ध भक्त के लिए हर क्षण ये लीला नया लगता है, नवम नवम। अगर पुराना लग रहा है इसका मतलब कहीं तो हमारा गड़बड़ी है, क्यों, क्योंकि कृष्ण लीला अनंत है, हर बार कुछ अलग तरीके से नजर आता है, कुछ अलग ही चीज नजर आता है। ये समुद्र जैसा है, समुद्र में कहां डुबकी मारा थे, कहीं मारे थे अमेरिका में डुबकी मारे थे, अभी इंडिया के पास डुबकी मारो, यहां अलग है, नीचे घुस के देखो यहां कुछ ऐसा अलग मछलियां मिलेगी, समुद्र वही है, अरे मैं डुबकी मार रहा हूं समुद्र में, अरे समुद्र है भाई, कहीं तो मारे होगे कोई कोने में, ये कोने में मार के देखो, यहां स्टार फिश मिलेगा, वहां वेल मछली मिलेगी, और अंदर गया तो अंत अनंत है ये। पर क्योंकि हम इसकी तुलना एक हिंदी पिक्चर से करते हैं, मालूम है हीरो आएगा पिटाई करेगा उसके बाद हीरो को लेके जाएगा बस, मालूम है क्या होने वाला है अभी मालूम है। पर क्योंकि कृष्ण अनंत है, नहीं तो कृष्ण के नाम में कैसा रस मिलता है लोगों को, किसी का नाम ऐसा नहीं ले सकते हम। तो उस भाव से अगर प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगे हम नवद्वीप में प्रवेश किए हैं अभी, ओ अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अभी हम लोग नवद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं, यहां श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार वापस आने के बाद जब वाराणसी से वापस आए तब उन्होंने अपना प्रकट किया है, अपना जो जिसलिए वो अवतरित हुए श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट करने के लिए और बांटने के लिए, प्रकट करने के लिए, अभी तक बांटे नहीं है तो प्रकट हुए हैं और एक 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 भक्त को समझा रहे हैं कि वो कौन है, किसी को दर्शन दिया, किसी को समझाया और श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन शुरू हो गया है और केवल वही लोग आस्वादन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त एक केवल बस, दूसरों को प्रवेश नहीं है। कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग नादान हैं जो पछता रहे हैं कि हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है, काश हम भी प्रवेश कर सकते। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पर एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे रहते हैं तो बुलाते हैं नित्यानंद और हरिदास को। ये जो लीला है ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड का 13वां अध्याय है, जगाई माधाई का उद्धार। ये लीला खास नित्यानंद प्रभु के जो गुण है, जैसे पूतना का वध जो है भगवान के दयालुता की सीमा है, इसी तरह से यहां भी नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है वो यहां दिखा उभर आता है। तो मैं पूरा चैतन्य इसमें प्रवेश नहीं करूंगा, समय नहीं होगा, पर संक्षिप्त रूप में बताऊंगा ये प्रसंग में आने तक। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, नित्यानंद और हरिदास को बुलाए खास और बोले, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। थोड़ा इसका आस्वादन करेंगे, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं और गुरु हमें सिखाते हैं किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है। तो आदि गुरु के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तब तक उन्होंने नहीं किया जब तक आज्ञा नहीं मिली। 20 साल से भ्रमण किया सब तीर्थ स्थानों में, शक्ति थी उनके पास पर किया नहीं। क्या वो परिवर्तन नहीं करते थे? उस समय कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते थे? नित्यानंद हमेशा वो नित्य उस आनंद में डूबे हुए हैं, पर जब तक आज्ञा नहीं मिली तब तक एक सेवक के रूप में, एक आदर्श सेवक के रूप में कैसा सेवा करना है। अपने आप को बहुत होशियार नहीं माने वो, क्योंकि महाप्रभु से 12 साल पहले ही प्रकट हुए थे 1874 में, 1474 में, पर 12 साल वहां रहे, फिर उसके बाद भ्रमण किया। 32 साल की उम्र में मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का, और किस तरह से उन्होंने शिरोद्धार किया। चैतन्य भागवत बताता है जिस दिन ये आज्ञा दिए नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, हमारे आदि गुरु हैं, हमारे परंपरा के ब्रह्मा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, साक्षात ब्रह्मा जी हैं। किसको दे रहे हैं आज्ञा? नित्यानंद प्रभु को और हमारे फाउंडर आचार्य को। दोनों ने किस तरीके से उस आज्ञा को शिरोद्धार किया। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, घर घर में जाके अमार आज्ञाए गुरु हो या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये आज्ञा हमारे ऊपर भी है, बहुत बड़ा बोझा है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे सेवक हैं, नाम के सेवक हैं, काम के सेवक नहीं। ये जिम्मेदारी है हमारी, ये सेवा, ये आज्ञा हो गया ऑलरेडी। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, वो टाइम नहीं है मेरे पास, जा रहे देखो, किसको भी देखोगे। अब बोले क्या, किसको भी पकड़ूं तो मैं गीता का श्लोक सुनाऊं क्या, पकड़ पकड़ के जो भी सड़क पे मिले? नहीं, शिक्षा का मतलब, सिखाने का मतलब है, आपोनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखा है। हर क्षण हमारे वचन, हमारे विचार क्या अनुकूल हैं कृष्ण भक्ति के प्रति, किसी ऐसी चीज में मैं नहीं लगाऊं जो प्रतिकूल है या विरुद्ध है शास्त्र के, तो फिर चलते फिरते शास्त्र है। हमारे विचार भी शास्त्र सम्मत है, हमारे आचार भी शास्त्र सम्मत है, तो वही एक प्रचार है। और जिस तरह से भी एक अनुकूल परिस्थिति मिली वो सुनने के लिए तैयार है। देखिए नारद मुनि ने किस तरह से प्रचार किया, अलग अलग लोगों को अलग तरीके से, एक ही फॉर्मूला नहीं लगाया सबको। एक एक्सपर्ट व्यक्ति देश काल पात्र देखकर जितना उसको ले सकता है उतना ही देता है। अब जिसको भी देखिए, मृगारी का कैसा उद्धार किया, उसको प्रवचन नहीं दिया, व्यासदेव का उद्धार अलग तरीके से किया, अलग अलग पूरे नारद मुनि का जो भी प्रसंग देखिए, अलग अलग लोगों को, प्राचीन परिषद को अलग, किसी को कहानी बोल के किया, किसी को हॉरर मूवी दिखा के, रास्कल तेरा क्या होने वाला है मालूम है जैसा कर रहा है, ये देख नरक में जाने वाला, डर के मारे उसको, किसी को डरा के करा, किसी को प्रेरणा दिया, असंतुष्टि थी तो संतुष्टि करने का तरीका बताया। पर जिससे भी मिलते हैं वो उनके अनुकूल परिस्थिति को समझकर किस तरह से उसको एक एक सेंटीमीटर, एक मिलीमीटर कम से कम कृष्ण के पास ले आना, बस चलेगा। या कम से कम अनुकूल करना उसको कृष्ण भावना के प्रति, या कुछ भी नहीं तो कम से कम सोचना के अच्छे लोग हैं लोग यार कृष्ण वाले। प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोले श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, ये ही हमारा एकमात्र कार्य भक्तों का, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पूरे संस्था का यही तीन कार्य है, बोलो कृष्ण, हमेशा कृष्ण का नाम स्मरण करो, नाम जपो, भजो कृष्ण, कृष्ण को भजो, यद करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददास्यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे, पी रहे, यज्ञ कर रहे, तपस्या कर रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, तत् कुरुष्व मदर्पणम् कृष्णार्पणमस्तु, भजो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। करो कृष्ण शिक्षा का दो मतलब है, अध्ययन करो कृष्ण की शिक्षा, गीता और भागवत को अध्ययन करो, अच्छी तरह से सुनो, सुन के समझो, समझ के उतारो, और उतारने के बाद शिक्षा करना मतलब देना। तो पहला शिक्षा मतलब सुनो, सुनने के बाद दूसरा शिक्षा मतलब उसको उतारो, उतारने के बाद समझो, समझे के बाद उतारो, उतारने के बाद दो दूसरों को, ये सब शिक्षा है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जीवन होना ही नहीं चाहिए भक्तों का। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं दिस इज व्हाट इट मींस कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखिए तीन शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त का जीवन क्या है बता दिया। प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और ये दोनों क्या किए, दूसरे भक्त लोग हंसने लगे क्या थोड़ी प्रैक्टिकल है क्या नवदीप में कैसे लोग हैं, महाप्रभु ठीक है अच्छी बात है। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, उनको लगा ठीक है बोल रहे हैं कुछ। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु और हरिदास ठाकुर गुरुमुखो पद्म वाक्य चित्ते ते करियो आज्ञा आरना करी हो मने आशा। कितना विश्वास था कि मैं सबको जाके दूंगा, सबको जाके दूंगा, क्योंकि आज्ञा मिल गया। अभी प्रति घरे घरे गया, हमको उतना विश्वास नहीं है। हम उसी घर में जाते हैं जहां वेलकम करते हैं, हमको स्वागत करते हैं। पर इनको कितना विश्वास। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने सारे शिष्यों को आज्ञा दिया था, पर उनको पूरा विश्वास श्रील प्रभुपाद जी में था। प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के था। उनके हृदय की बात समझे थे और उनको विश्वास था, इसीलिए एक सही प्रतिनिधि है वो। कितना विश्वास था महाप्रभु के वचन में। अभी वचन हो गया, विद द इंस्ट्रक्शंस कम्स द एम्पावरमेंट। आज्ञा के साथ शक्ति मिलती है। एब्सोल्युटली नामुमकिन लगता है हमारे लिए, और सच है हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। हमारे नामुमकिन है शुद्ध भक्ति करना, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये करना वो करना, ये सब करना नामुमकिन है। अहंकार के स्तर से देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, पर नम्रता से करेंगे, हमारी कुछ योग्यता नहीं है। पर आपने कहा है मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे आपकी इच्छा है नचाओ प्रभु, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माते। नम्रता से उत्पन्न होती है निर्भरता। जब नम्र पूर्वक स्वीकार करेंगे उस आज्ञा को और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होंगे और अपना प्रयास करेंगे, तो अद्भुत चीजें भगवान हमारे से करा सकते हैं। क्या इतना गहराई में जाके हमने कभी इसका ये लीला के बारे में सोचा है? ये सुनना चाहिए ऐसे भक्तों से, और इधर उधर इकट्ठा करके बांटना चाहिए। बांटते बांटते कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी बांटने के बाद समझ में आता है क्या बांटा मैं उनको, अरे इतना बांटा, मेरे को भी थोड़ा चाहिए था। ये हमारी आज्ञा है, ये हमारे लिए सबके लिए आज्ञा है, ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा। और किस तरह से इन्होंने शिरोद्धार किया, किसी को छोड़े नहीं। उनको इतना विश्वास था, बोले इनको भी बोलेंगे ये दोनों को। अच्छा सबके घर गए वो, एक्चुअली सबके घर गए, और क्या बोले वो, क्या बोले वो थोड़ा भी प्रेम से बोलेंगे हम। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। यही उनका संदेश था। बोले और कुछ मत करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहो। क्यों? कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, इसको स्वीकार करना। तुमेव माता च पिता तुमेव, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में। पिता के पास आदमी किस लिए जाता है? बच्चा मांगने के लिए, पापा माला ये पाइजे, वो पाइजे, ते पाइजे। और जब मार खाता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास। आई आशा पड़ ला, ही गिर गया तो रोते रोते आई। तो सो सारा दुख है यही हमारे माता, यही हमारे पिता, इसके अलावा कोई नहीं। और कहां जाना है? एक बच्चे को मां के अलावा किसी को नहीं मार, कुछ भी हुआ तो मां के पास भागता, वो चाहिए तो पिता के पास। और कृष्ण धन प्राण, अपना धन को पकड़ के रखता, कभी छोड़ता नहीं वो, कुछ भी हो जाए पर पहले ये चीज उठा के ले जाएगा। घर में आग लगी तो पहले उसमें से मेन चीज उठा के, और सब जलने तो चलेगा पर ये नहीं जाना चाहिए, जो सबसे प्रिय है प्राण है। तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो यही सब कुछ है। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर। और क्या है? बस हो गया। धन है वही, पति वही है, और प्राण वही है। कुछ लोग उनको बड़े आदर पूर्वक सम्मान देके स्वीकार करते थे, घर में बुला के उनको कुछ खाने को बोलते, उनको खाना नहीं, ले लो बस, मैं जो बोल रहा हूं ना वही, हम संतुष्ट हैं। और कुछ लोग अलग प्रकार से व्यवहार करते थे, कुछ लोग दरवाजे पे मुंह जो है सीधा मुंह पे दरवाजा मारते थे, भाव यहां से चोर लोग हैं, दोनों चोर है ये लोग, आके देखते सुबह सुबह जाके देखते किसके घर में क्या है, रात को आके लूटते लोग। इतना अपवाद। और कुछ लोग जो द्वेष करते थे, रात को पूरा तुम लोग नाचते मालूम है ये लोग, उन लोग तो बोले, सब लोग बोले पीटूंगा, हम पीटेंगे तुम लोग, जाके कंप्लेंट करेंगे पुलिस को और आके तुमको बंदी बना के डालेंगे, जेल का हवा खाना पड़ेगा। सब प्रकार की धमकी जो हरे कृष्ण आंदोलन में मिला लोगों को, इसकी परंपरा है। कुछ लोगों ने प्रेम से स्वीकार किया है, कुछ लोगों ने गाली दिया है, कुछ लोगों ने शंका किया है। माहिती है कसाला तुम्हें आता काय पाजा सांगा, बगुन जाता आणि नंतर घेऊन जाता। तो ये स्वाभाविक है, पर उन्होंने रोका नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा बोलते कि क्या मैं नहीं बोलूंगा, हम करते रहेंगे, हमको इनसे लेना देना नहीं है, बोल दिए क्या करेंगे। और कभी कभी उनमें से नित्यानंद जैसे लोग भी होते हैं, हरिदास ठाकुर ने बोला ऐसा पार्टनर मिला है मेरा, अरे अरे तो कुछ ज्यादा ही विश्वास है इसके ऊपर, कहीं भी छलांग मार देता है, किसी के पास जाके कुछ भी बोल देते हैं, क्या करें हम। नित्यानंद प्रभु की ऐसा प्रीचिंग पार्टनर मिले, हरिदास ठाकुर ने बोला, अद्वैताचार्य बोले एक बार आंख लग गया। देखिए मध्यम अधिकारी जिसको कृपा करने की इच्छा करता है ना, वहां वहां भगवान की कृपा बहती है, क्योंकि उत्तम अधिकारी सबको भक्त समझता है, किसी को प्रचार ही नहीं करता। भजनानंदी आराम से बैठे रहते, उसको मालूम है सब कृष्ण के पास आएंगे अल्टीमेटली, थोड़ा मार खा के आएंगे, थोड़ा सीधे आएंगे, आएंगे इवेंचुअली, हरे कृष्ण पर्सनली भगवान सबका अरेंज कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में घुमा के लाएंगे। शुद्ध अधिकारी सबको देखता है एक्चुअली, क्योंकि भगवान की शक्ति, भले वो बहिरंग शक्ति हो अभी अंतरंग शक्ति हो, सब भगवान की शक्ति की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा देखकर वो प्रार्थना करता, उसकी प्रार्थना सब चलती है ऑफकोर्स। पर और कनिष्ठ अधिकारी अपनी दुनिया में रहता है, मध्यम अधिकारी जो है वो ही जाता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम, कृपा नादान व्यक्तियों के प्रति कृपा, एटलीस्ट प्रदान किसी न किसी तरह से, प्रसाद देना, पुस्तक देना, ये देना, कृष्ण के बारे में बोलना, हरिनाम के बारे में बोलना, तो ये जो है वो मध्यम अधिकारी की कृपा से होता है। और एक एक मध्यम अधिकारी के रूप में दिखा रहे हैं, और उनकी इच्छा थी अरे ये लोग भक्त बन जाते तो कितना अच्छा होगा। जगाए मदाई को जब देखे बोले सबसे पतित लोग हैं लोग, उच्च कोटि के ब्राह्मण और अधम कोटि के नालायक व्यक्ति बन गए, ये लोग पापी लोग बन गए। तो बोले अभी इनको इनको अगर उद्धार हो जाएगा तो महाप्रभु का यश बढ़ेगा, और इसलिए गए। पहला लोगों ने बोला मत जाओ, पर नित्यानंद प्रभु गए और बाद में भागा भगाने लगे वो, तो भागते भागते वो हंसी मजाक हो रहा था उनका, भले भाग रहे थे बोले। तो हरिदास को बोले अरे तू ऐसे कैसे भागता है, तेरे को इतना मारपीट किया था उन लोगों ने, वो मुस्लिम इसने अभी क्यों भाग रहा है। तो बोले मैं क्या करूं, तेरे जैसे व्यक्ति आपके जैसे व्यक्ति मिल गए तो क्या करूं मैं, मैंने कभी ऐसा जाके बोला नहीं, अब किसी जाके उनके से सीधा मुंह पे बोल देना कि कृष्ण भजो, किसको भी आपने बोल दिया, मैं तो हरिनाम करता था बस। तो इस तरह से हास्य आदान प्रदान हो रहा था, भाग रहे थे। फिर जगाई मदाई ने महाप्रभु के घर के पास में अपना तंबू गाड़ दिया थोड़े दिन के लिए, और वहां हर रोज सुनते थे कीर्तन। उनको लगता था तो जब भी कीर्तन होता था मृदंग बहुत अच्छा बजता था, सुनाई देता था, इसीलिए तो लोग चिल्लाते थे, बहुत जोर से सुनाई देता। तो वो लोग गंगा के तट पर तंबू लगाए थे, वो लोग भी नाचते थे हमेशा कीर्तन सुन के। उनको लगता था मंगल चंडी का डांस हो रहा है, चंडी माता का, तो वो लोग भी नाचते थे। और जब महाप्रभु निमाय पंडित वहां स्नान जिस घाट पे स्नान करने जाते थे वहीं वो लोग खड़े थे, तो वो लोग बोले निमाय मंगल चंडी का कीर्तन बहुत अच्छा होता है, करते रहो अच्छा करो। निमाय देखे भी नहीं, चुपचाप चले जाते। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु ने निश्चय किया अभी इनको उद्धार करना ही है, सीधा चले गए। वो चले गए और फिर से बोले यार है तेरा नाम, बोले अवधूत अवधूत, वापस बोलता हूं। सीधा मदाई ने पटक दिया, और जब लोगों को पता चला जाके बोले वो महाप्रभु को, महाप्रभु बहुत ही क्रोधित होके आए और उन्होंने निश्चय किया था कि उसको मैं मार डालूंगा, मतलब 100% सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था फांसी का सजा है 100%। और भगवान जब इच्छा करे उसके विरुद्ध कोई हो ही नहीं सकता, केवल वही भगवान दूसरे स्वरूप में आना चाहिए नित्यानंद के रूप में। वो आके बोले नहीं प्रभु ऐसे मारोगे तो कोई बचेगा नहीं कलयुग में। बोले एक काम कीजिए, इनका अभी आपको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। जगाई देखा, जगाई ने एक्चुअली उन्होंने बोला जगाई ने मुझे बचाया, पहले थोड़ा मतलब वो जूडो कराटे में ऐसा होता है उसका पूरा शक्ति आता है ना उसको थोड़ा डाइवर्ट करने का बस, तो पूरा शक्ति इधर, बोले एक काम करो इधर इधर, जगाई ने मेरे को बचाया। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान जगाई के ऊपर ले गए और उसने बचाया। बोले वाह तुमको बचाया, जो नित्यानंद प्रभु की सेवा किया वो मेरे को प्रिय है। तो तुरंत वो एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर नित्यानंद को प्रसन्न कर दे तो फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बड़ा आसान है। नित्यानंद प्रभु का रिकमेंडेशन है तो महाप्रभु स्वीकार कर लेते। उन्होंने बोला ये मेरी सेवा किया एक्चुअली, बचाया मेरे को। और एक्चुअली महाप्रभु जब कृपा किए तो शुद्ध भक्ति उसको मिला, और उसको देखकर जगाए और मदाई एक ही शरीर जैसे, मतलब एक आत्मा और दो शरीर समझ लो, साइमिस ट्विंस, मतलब मैं साइमिस ट्विंस है, उनका आधा शरीर उनका आधा जुड़ा हुआ, एक ही हार्ट है, काट भी नहीं सकते, हृदय एक ही है उनका। तो क्योंकि उसको शुद्ध हो गया तो इसका भी थोड़ा असर पड़ा इसको भी, दोनों इतने मतलब एक साथ चूज करते थे, उसको जो लगता था इसको भी वही लगता था, उसका परिवर्तन इसका भी कुछ अलग है, कुछ तो हो रहा है उधर। अर्थात उसने पूछा, महाप्रभु ने इनकार किया, बोले नहीं तूने मदाई नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया है। और नित्यानंद प्रभु को बोले अगर वो माफ किया तो ठीक है। और नित्यानंद प्रभु जब गले लगाए, ये सुंदर श्लोक में वर्णन है, ये 217 है अध्याय 13 का, हाँ पेज 321। ये 320 निकाल, श्लोक 199 ना? मैं श्लोक पढ़ूंगा और आप उसका मराठी अनुवाद सुनिए, हिंदी से अगर तंग आ गए तो। 199
जगाइरे प्रभु जबे अनुग्रह कोइला माधाई रो चित्त तत क्षणे भाल होइला।
श्रीमन महाप्रभु ने ज्यावेळी जगाईवर कृपा केली तेव्हा माधाईचे चित्त देखील तत्काळ शांत झाले।
आथे व्यथे नित्यानंद वसन एडिया पडिला चरण धरी दंडवत होइया। दुई जने एक ठाई कोइला प्रभु पाप अनुग्रह केने प्रभु होए दुई भाग। देखिए कितना होशियार है माधाई, इतना होशियारी था कम से कम उसको। बोले जो किया साथ में किया है, आप समदर्शी है ना, तो उसको दिया था अभी हमको भी दो, उसने जो जो मारा मैं उसका उतना ही मारा हूं मैं। मोरे अनुग्रह करो लय तोरा नाम आमारे उद्धार करी बारे नारे आम। प्रभु बोले तोर त्राण नाही देख मुई नित्यानंदे अंगे रक्त पड़िले से तुई।
महाप्रभु म्हणाले तुझा उद्धार होई असे दिसत नाही कारण नित्यानंद प्रभूंच्या श्री अंगातून तू रक्त काढले।
माधाई बोलोय इहा बोलिते ना पार अपनार धर्म प्रभु आपनी केने छाड।
माधाई म्हणाला प्रभु तुम्ही असे म्हणू शकत नाही, तुम्ही तुमचा धर्म का त्यागता।
वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मधाई ब्राह्मण था, वो बिगड़ गया थे बुद्धि बुरा संग से, होशियार था, कितना अच्छा आर्गुमेंट करता है मार खाने के बाद भी, आई मीन मार मारने के बाद भी।
बाणे बंधी ले को तुमा जे असुर गणे निज पद तास बारे तबे दिले केने। प्रभु बोले ताहा हईते तोर अपराध नित्यानंद अंगे तुई कैली रक्त पा।
त्यावर श्री चैतन्य महाप्रभु म्हणाले त्यांच्या पेक्षा तू केलेला अपराध मोठा आहे कारण तू नित्यानंद प्रभूच्या श्री अंगातून रक्त पा घडवलास।
आमा हईते मोर नित्यानंद देह बड तोर स्थाने एई सत्य कहिलाम दृढ। सत्य जदि कहिला ठाकुर ठाकुर मोर स्थाने बोलो हो निष्कृति मुई तरी मु के मने।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब माधाई पूछ रहा है, ठीक है आप बोल रहे हो, आप बताओ किस तरह से मैं इससे बाहर आ सकता हूं।
सर्व रोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुमी तुमी रोग चिकित्सिले सुस्थ होई आमी।
तुम्ही तर सर्व प्रकारच्या रोगांचा नाश करणारे वैद्य शिरोमणी आहात, माझ्या रोगावर तुम्हीच उपचार केला तर मी ठीक होईल।
वैद्यो नारायणो हरि, सबसे बड़े वैद्य है हरि नारायण।
ना कर कपट प्रभु संसारेर नाद विदित होइला आर लुकाइवा काद। प्रभु बोले अपराध कैल तुमी बड़ नित्यानंद चरण धरिया तुमी पड़।
महाप्रभु म्हणाले तू फार मोठा अपराध केला आहेस म्हणून नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी तू शरण जा।
पाईया प्रभुर आज्ञा मधाई तखन धरिला अमूल्य धन निताई चरण।
महाप्रभूंच्या आज्ञेप्रमाणे माधाईने नित्यानंद प्रभूंच्या चरण कमल रूपी अनमोल धनाचा आश्रय
जे चरण धरिले ना जाई कभू नाश रेवती जाने ना चे जे चरण प्रकाश।
हम सब मधाई के समान है। आज के दिन अगर ये एक चीज करेंगे, नित्यानंद प्रभु के चरण धारण करेंगे, तो अगर मधाई का उद्धार हो सकता है। वो उतना पापी नहीं है हम लोग, किसी का मर्डर नहीं किया शायद आज तक, जानते जानते मच्छर को छोड़ के कॉकरोच ज्यादा से ज्यादा एक दो चूहा को भी मारा होगा
विश्वंभर बोले सुन नित्यानंद राय पड़िले चरणे कृपा करिते जुआय। तुमार अंगे ते जेन कैला रक्त पात तुमी से क्षमित पार पड़िला तोमा।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जब भक्तों के प्रति हम अपराध करते हैं तो भगवान भी नहीं माफ करते। जैसे दुर्वास मुनि की प्रसंग में हम देखते हैं, भगवान बोले मैं असहाय हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरे चक्र निकल गया जब तूने अम्बरीश पर आक्रमण किया। आई एम हेल्पलेस, मैं नहीं सहाय हूं। अभी एक ही व्यक्ति बचा सकता है जिसके प्रति तूने अपराध किया, उसी से। महाप्रभु ने भी यही कहा, बोले श्रीवास ठाकुर को के प्रति तूने अपराध किया है, अपना गोपाल चापल को, बोले कोटि कोटि जन्म तक तू ऐसा सड़ता रहेगा कुष्ठ रोग होके। और फिर जब विद्यानगर में जब कृपा कर रहे थे महाप्रभु, तब वो आया फिर से, तब बोले जाओ श्रीवास ठाकुर के पास जाओ, उससे माफी मांगो। ये एक चीज जो है वो सहन नहीं कर पाते भगवान।
नित्यानंद बोले प्रभु की बोली वो मुई वृक्ष दारे कृपा करो से हो शक्ति तुई। कोनो जन्म थाके जदि आमार सुकृत सब दिलु माधाई रे सुनह निश्चित। मोर जत अपराध किछु दाय नाई माया छाई कृपा करो तुमार माधाई।
यही कृपा है। जब नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हमें महाप्रभु के चरणों में भेजते हैं, और वहां से जब नित्यानंद प्रभु किसी को भेजते हैं तो महाप्रभु ना नहीं कर सकते उनको।
विश्वंभर बोले यदि क्षमिला सकल माधाई रो कौल देह हो का सफल। प्रभुर आज्ञा ए कैला दृढ़ आलिंगन माधाई रहिला सर्व बंध विमोचन। माधाई रेहे नित्यानंद प्रवेशिला सर्व शक्ति समन्वित माधाई होइला। हे न मते दुई जने पाइला मोचने दुई जने स्तुति करे दुई र चरणे। प्रभु बोले तोरा ना करिस पाप जगाई माधाई बोले आर नारे बाप। प्रभु बोले सुनो सुनो तुमी दुई जन सत्य तोरे आमी बोलिल वचन। कोटी कोटी जन्मे जत आछे पाप तोर आर जदि ना करिमु सब दाय मोर।
तुम्ही
ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। हम लोग बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। आप तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। इधर भगवान के मुख से बोल रहे हैं, प्रभु बोले सुनो सुनो तुम्ही दुई जन, जिनका उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया है, बोलो दोनों ध्यान से सुनो, तुम लोग जगाई मधाई को बोल रहे हैं, यानी हम सबको बोल रहे हैं ये, क्योंकि हम सब जगाई मधाई जैसे हैं। सत्यो ही तोरे आमी बोली लो वचन, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे वचन सत्य हैं, ध्यान से सुनो। कोटि कोटि जन्मे जो तो आछे पाप तोर, तुम लोगों के करोड़ों जन्मों का पाप जो है, आर जदि ना करीमु सब दाय मोर। अगर तू आश्वासन देता है कि मैं और कभी नहीं करूंगा तो सारा पाप मैं स्वीकार करूंगा तेरा, यही दीक्षा है। दीक्षा का मतलब यही है, दीक्षा का मतलब गुरु यही कहता है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु यही कहता है, मैं सब तेरा लेने के लिए तैयार हूं भगवान की आज्ञा के अनुसार, करोड़ों जन्मों का पाप मैं लेने के लिए तैयार हूं, निष्पाप हो जाएगा। दीक्षा काले रूप गोस्वामी, अपना जीव गोस्वामी कहते हैं, पद्म पुराण का शायद एक कोट है, कृष्ण अपने समान बना देते हैं उसको, शुद्ध कर देते हैं, अपने समान शुद्ध कर देते हैं उसको दीक्षा के समय में, और उसको स्वीकार कर लेते हैं। और दीक्षा का सही में मतलब क्या, ये मतलब है एक्चुअली, सिर्फ नाम के वास्ते नाम बदल गया ऐसा नहीं, दीक्षा का मतलब हम वचन देते हैं फिर से वो नहीं करेंगे। दो चीज प्रभुपाद जी समझाते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 33-34वां श्लोक में, कि ये दीक्षा की प्रणाली है, कि क्या है, दो चीज, प्रायश्चित और तपस्या। दीक्षा मतलब दो चीज हमारे हृदय में होना चाहिए, प्रायश्चित और तपस्या। प्रायश्चित मतलब क्या, पिछले सारे किए हुए पाप का प्रायश्चित, छी मैं जो भी किया गलत किया, क्या किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, करोड़ों जन्मों से मैं ही करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा था, मैं मेरा गुणगान सुन रहा था, मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, पूरा विश्व का केंद्र मैं था। अब आप केंद्र हो प्रभु, केवल आपका गुणगान, आपका गुणगान, अभी से मैं अपना गुणगान बंद, केवल आप, आपको मैं केंद्र था पूरे विश्व का, अब मैं आपको केंद्र रखूंगा अपने जीवन का, और केवल आपका गुणगान करूंगा। मैं अपने गुणगान सुनने में आनंद लेता था, जो गलती थी मेरी, अब मुझे प्रायश्चित हो रहा है, आपका गुणगान करना चाहिए। और उसका स्वरूप है प्रायश्चित, मतलब सुप्त कृष्ण भावना को जगाना, प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में, प्रायश्चित का मतलब क्या है, टू रिवाइव अवर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे, 16 माला जप, 16 माला शुरुआत बस, कम से कम, नहीं तो कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तु माम। करोड़ों जन्मों से हम अपना गुणगान सुनते हैं, अपना गुणगान करते हैं, अपने को केंद्र माना है, अब प्रायश्चित होकर, प्रायश्चित का स्वरूप है हम वचन देते हैं कि अब मेरा गुणगान नहीं, आपका गुण, कम से कम दिन में इतना तो गुणगान आपका करूंगा। 64 माला था, 64 को प्रभुपाल ने बड़े कृपा करके 16 कर दिया हमारे लिए, कम से कम 16। ये एक्चुअली हमारे प्रायश्चित का स्वरूप है। अगर ये नहीं कर रहे इसका मतलब प्रायश्चित नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ी किया भगवान के पास जाके, वह पहले का जीवन ही अच्छा था, कुंजर शौचवत, फिर से हाथी स्नान, स्नान करके गया, गुरु के शरण लिया, और बाद में वही वापस वही काम कर रहे हैं, मिट्टी में लुढ़क रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। तो इतना गंभीरता से हमको लेना चाहिए ये जो प्रभुपाद की दी हुई, नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु के परंपरा में आई हुई ये तरीका, जगाई माधाई जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए। और दूसरा है प्रायश्चित पहला, और प्रायश्चित होने के बाद तपस्या। तपस्या मतलब क्या? फिर से वही काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मांसाहार, नशा, जुआ और व्यभिचार। ये तो स्थूल रूप हुए। स्थूल रूप किस चीज के? धर्म चार पद पर खड़ा हुआ है, चार पैर पर, खंभे के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो चार पैर हैं सत्यम शौचम तपह दया। सत्यम चला जाता है, शौचम शुद्धता, और तपह तपस्या, और दया, दया चला जाता है मांस खाने से। दूसरे जीव को मारने के बाद उसको आनंद लेने में कैसा दया होगा हृदय में? तो स्थूल रूप से, बहुत स्थूल रूप से दया करना है तो कम से कम मांस मत खाओ भाई। तो मतलब मनुष्य बनो, दो पैर वाले चलते फिरते प्राणी मत बनो, कम से कम मनुष्य बनो। एक शुद्ध भक्त नहीं बने सिर्फ एक चार चार चीज करने से, वो भी नहीं कर पाते हम लोग। दया, सत्यम, शौच, तपह। तपस्या कैसे चली जाती है कोई बता सकता है? तपस्या कैसे चली जाती, कौन से करने से? नशा, ऑलरेडी हम लोग नशे में हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीति आपणोति। तो ये नहीं करना, जुआ क्या बोलते हैं ये नशापान, सत्यम शौच तपह, शौचम शुद्धता कैसे होती है? क्लीनलीनेस। व्यभिचार, मन की शुद्धि, सूक्ष्म रूप से मन की शुद्धि, पर तन की शुद्धि कम से कम, स्थूल रूप से तो कम से कम व्यभिचार मत करो। तो स्थूल रूप से शुद्धता, बाद में पता चलता है। असती, सती का मतलब कृष्ण के अलावा किसी और के शरण लेंगे तो हम वो प्रोस्टिट्यूट क्या बोलते हैं, वेश्या जैसे हैं। पति मोरा गौर चंद्र, उनको छोड़ के किसी और के आश्रय लेंगे, वो हमारे पति बन गए। दस पति हैं हमारे, टाइम आने पर ये पति, रविवार को ये पति और सोमवार को वो पति, तो वेश्या है वो, शुद्धता नहीं है। तो स्थूल रूप से व्यभिचार नहीं करना, पर सूक्ष्म रूप से किसी और की शरण लेना, आश्रय किसी और का लेना भी एक प्रकार का कलमश है, अकिंचन नहीं हो, अकिंचन भक्ति नहीं है। और फिर तीसरा कौन सा? सत्य, सत्य कैसे चला जाता है? गैमलिंग, जुआ खेलने से प्रामाणिकता चली जाती है। जुआ मतलब क्या? दो पैसा डाला, दो लाख मिला, और सत्य के मायने जितना किया उतना उतने ही में संतुष्ट रहना, एक प्रकार का जुआ खेलना है। और सबसे बड़ा जीवन को जुआ खेलते हैं हम लोग, जीवन का ही जुआ खेलते हैं हम लोग, हर एक क्षण जो है इधर उधर गंवा देते हैं। तो एक्चुअली जगाई मधाई का आप अभी, मैं इसलिए यहां से प्रसंग उठाया क्योंकि अब आप सुनिए उनकी प्रार्थना, उनका परिवर्तन, और ये होना चाहिए। और एक रूप से देखा जाए, भले स्थूल रूप से जगाई माधा इतने से होते, पर सूक्ष्म रूप से ये सब हम करते हैं। गुस्से से कितने लोगों को मन में नहीं मारा हम लोगों ने, उसको मारो ऐसा मार के तोड़ के गटर में डाल के पाइप के अंदर घुसा के बंदूक में उड़ा के उड़ूंगा, और उसको ऐसा गोला बना के सब मार मार के, कीचक को जिस तरह भीम ने मारा, ऐसा मन में कितने लोगों को हमने नहीं मारा है, कितने लोगों का घर नहीं जलाया मन में, सब किए हैं। बस अभी शक्ति नहीं, मालूम है पुलिस पकड़ लेगा, कोई और जाके मार देगा, इसीलिए उनकी ताकत था, हिरण्यकशिपु को ताकत था, रावण को ताकत था, खुलेआम करते थे। हम लोग समाज के डर से या शक्ति नहीं होने के कारण या पुलिस के डर से अंदर बैठे, पर अंदर अंदर सब चल रहा है, कुछ कमी नहीं है। तो सचमुच में एक रूप से हम सब माधाई हैं, जगाई माधाई हैं, और जो कुछ सुनाने आता है उसके ऊपर ही प्रहार करते हैं हम लोग, जो कुछ अच्छा बोलने आता है उसके ऊपर ही मारते हैं हम लोग, उसको ही डांटते हैं, तेरा कुछ काम नहीं है क्या, तेरे को पैसा मिलता है लगता है, इसलिए पुस्तक बेचने आ रहा है, मतलब उसकी तप्पड़ मारना उसको। सबके सब जगाई माता है हम लोग, ऐसा मत समझना है जगाई माता है ना, ये कड़ होते थे। हम कौन से नशे में नहीं है, हमेशा नशे में रहते थे वो लोग 24 घंटे, हम लोग भी नशा, अहंकार में मूढ़ात्मा, अहंकार के नशे में हैं हम लोग। तो ये लीला हम सबके लिए है, ये नहीं है कि वो लोग सब करते थे, जगाई माता पापी लोग थे, सुनो सुधर जाओ। मानो मैं नित्यानंद हूं, चलो मैं तुम्हारा पाप को ये हमारी परिस्थिति है। तो यही इसका मतलब है, दीक्षा का मतलब यही है कि इसको हम गंभीरता से लेंगे। दीक्षा हो या नहीं हो दूसरी बात है, होना चाहिए, पर अगर ये चार ये दो चीज को गंभीरता से नहीं लिए। अच्छा तो होता क्या है, दीक्षा दीक्षा का मतलब क्या होता है, अगर ये दो चीज किए, प्रायश्चित और तपस्या, ये दो चीज करे तो कैसा हमारा जीवन मंगल में होता है। ये दो चीज करने से ऑटोमेटिकली महामाया योग माया के रूप में अपने जीवन में परिवर्तित हो जाती है, एक्चुअली वो उसका मतलब है। सिर्फ वो रिचुअल नहीं दीक्षा का, जिस दिन मन से हमने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया एक्चुअली दीक्षा हो गया है। अगर दीक्षा लेने के बाद भी अगर ये दो चीज नहीं है हमारे हृदय में, तो सिर्फ नाम के वास्ते, यश के वास्ते, या कुछ क्या बोलते एक फैसिलिटी के लिए हमने लिया है बस। और एक कनिष्ठ समाज में ये बहुत प्रचलित होता है, कनिष्ठ समाज में हर एक को दीक्षा चाहिए, क्यों, क्योंकि एक प्रेस्टीज है, ब्राह्मण का धागा जैसा है दिखाने के लिए, मेरा दीक्षा हुआ है। अरे तू क्या बोलता है, मैं दीक्षा हुआ है, समझा, मेरा नाम क्या मालूम, हाँ तेरा नाम क्या है, राहुल, मेरा नाम गोविंद दास है, हाँ समझा, मैं बॉस हूं तू दास है, समझा, क्योंकि मैं गोविंद दास हूं, हो गया खत्म। तो कनिष्ठ समाज में दुर्भाग्यवश इस पर प्रामुख्यता दी जाती है। दीक्षा जो है वैयक्तिक चीज है, सामाजिक चीज नहीं है, संस्था में दिखाने का चीज नहीं है, वैयक्तिक चीज है, मेरा और गुरु का रिश्ता है, बहुत पवित्र है, सिर्फ अपने को रखना है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। तो ये अगर हम जिस दिन समझ गए, तब जगाई मधाई की लीला अपने जीवन में होगी। और मधाई का जिस तरह से परिवर्तन हुआ, कहां कितना नीच स्थिति से महाभागवत बन गए, भगवान के साथ नाचने का योग्यता मिल गया उनको, डायरेक्टली आत्मसम महाप्रभु उनको ले गए, अपने कीर्तन में नचाए उनको सारे पार्षदों के साथ। वो परिवर्तन होता है एक्चुअली। तो महामाया, एक्चुअली महामाया और योग माया दोनों एक ही है, भगवान के लिए एक ही, हमारे लिए अलग है। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिसिटी वही है, एक कूलर में गया एक हीटर में डाला, हो हीटर में गर्म होता है, कूलर में ठंडा होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा एक ही शक्ति है, परास्य शक्ति विविध ही श्रूयते, विविध रूप से प्रकट होता है। तो अभी वो शक्ति महामाया है, और वो ही मां अगर आपकी चेतना में परिवर्तन, ये दो चीज हो गया, प्रायश्चित और तपस्या। प्रायश्चित का मतलब जो भी मैंने पिछले भी किया गलत किया, और तपस्या का मतलब फिर से वो नहीं करूंगा। उसमें क्या होता है, सेम महामाया योग माया में परिवर्तित हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तीन चीज आता है भगवान से। भगवान अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, मत स्मृति, भगवान स्मृति देते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत, अर्जुन ने कहा गीता सुनने के बाद, मुझे स्मृति आ गई, अभी तक मैं विस्मृति में था, नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया, स्मृति आ गई, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो ये स्मृति है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान भी मिलेगा, और अपोहनम। अपोहनम का मतलब क्या? भूलना, भूल जाना। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहंचा, मैं तुम्हें भुलाता हूं और मैं तुम्हें ज्ञान और स्मृति देता हूं। अरे दोनों चीज वही करते हैं। हां, महामाया के द्वारा भुलाते हैं और योग माया के द्वारा स्मृति और ज्ञान देते हैं। किसको भुलाते हैं और किसको ज्ञान देते हैं? जिसके हृदय में प्रायश्चित नहीं है, जिसके हृदय में जो भोग करना चाहता है। भगवान के संपत्ति को भोग कैसा कर सकता है? अगर पता चला कि भगवान का है तो भोग नहीं कर सकता, इसीलिए उसको भुला देते हैं। हिप्नोटिज्म, तू सुनील उबाड़े नहीं है, तू जयश्री है, अगर बोल दे और चलने लगे, अगर सोच ले उनकी पत्नी का नाम बोला और उनको लगे कि मैं उनकी पत्नी हूं, इसका मतलब मोह। तुम है को और करते कुछ और, उसके जैसे खाना पीना चलना, तो ये विस्मृति है। हम भूल गए हम कौन हैं और हम किसी और के समान एक्टिंग कर रहे हैं। हम भोगता हैं, हम ये हैं, ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षस मतलब हिरण्यकशिपु, रावण जैसे होने की जरूरत नहीं। जिस हद तक हम ईश्वर समझते हैं और व्यवहार भी हमारा ऐसे होता है, सब चीज मेरे भोग के लिए है, तो एक्चुअली हम योग माया में, सॉरी महामाया में। सो विस्मृति, विस्मृति का बटन चालू कर दिया भगवान ने। तू भूलना चाहता है ना मेरे को, भोग करना चाहता है ना, मैं आपके घर आके आपके फ्रिज खोल के खाऊं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मालूम है आपका घर है, पर अगर मैं एक्सीडेंट में पागल होकर समझू कि मेरा घर है तो मैं घुस सकता हूं, फिर आपको भगाऊंगा, तो मेरे निकल, मेरा घर है ये। तो ये भगवान का है सब कुछ, पर हम आके यहां झंडा गाड़ रहे हैं हम लोग, ये मेरा, ये जनस्य मोहो यम अहम ममेति। तो सबसे बड़ा महामाया, तो विस्मृति दे देते हैं। पर जिस दिन प्रायश्चित हुआ कि प्रभु आज तक मैंने जो किया पागलपन था, माफ करो, क्या किया मैंने, कितना बड़ा अपराध किया, और दूसरा फिर से मैं नहीं करूंगा ये तपस्या, फिर से वही कीचड़ में नहीं घुसूंगा, अगर हो गया तो वही बटन बंद करके, नीला बटन होता है महामाया का, वो बंद करके लाल बटन चालू करते, और लाल बटन कौन सा है? योग माया, और वही स्मृति और ज्ञान देता है कि मैं भगवान का सेवक हूं और सब कुछ भगवान का है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी भगवान का है। अब इस शरीर को केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी सेवा में नहीं लगाना है। तिलक धारण करने का, कंठी माला पहनने का यही मतलब है। अभी ये भगवान का शरीर है, इस पवित्र शरीर में मेरे भोग की चीज वस्तु नहीं जाना चाहिए, केवल भगवान का प्रसाद जाना चाहिए। मैं कैसे अंदर चीज और कुछ डाल सकता हूं, भोग कर सकता हूं उल्टी चीजें चीजें नहीं, केवल वही चीजें जो सेवा के लिए जरूरत है उतना ही मैं स्वीकार करूंगा। और शाक कोरी आस्वादन, प्रभु बोले यही शाक कृष्ण आस्वादी लो, तो उस समय भोग नहीं का। यज्ञ शिष्टा भुंजते दे तू अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, उस समय जो खान प्रसाद खा रहे हैं हम बोल रहे हैं कि भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है। तो स्मृति होती है, ज्ञान बढ़ता है, जो भी कर रहे हैं यद करोषि यदश्नाशि यज्जुषि तत्कुरुषो मदर्पणम, तब एक्चुअली योग माया हो जाता है। तो वस्तु वही है, सिर्फ चेतना बदलने से। एक फूल को देखते थे तो हमें अपने गर्लफ्रेंड का याद आता था, वाह ये गुलाब उसके बालों में कितना अच्छा लगेगा, भोग करने की भाव। गुलाब वही है, भगवान की सृष्टि है, भोग करने का भाव। पर एक ऐसा पासवर्ड है जो पूरा फाइल खोलता था, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्य संगा संचायते कामात् क्रोधो भिजायते। पर अब जब प्रायश्चित हुआ तपस्या के बाद, अब वो फूल को देखते हैं, वाह क्या सृष्टि, ये कृष्ण भोगता है। पहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यात् प्रयच्छति, अब ये भगवान को लगेगा, उसके बाद मैं उसको सूंघूंगा प्रसाद के रूप में, शाकोरी आस्वादन, उसका आस्वादन करूंगा मैं हर एक चीज का। और तब हमें समझ लेना चाहिए हम उस कृपा को स्वीकार किए हैं, जिस दिन ये परिवर्तन हमारे हृदय में होगा। तो इसलिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु बोले सुनो सुनो तुम्ही दुई जन सत्य ही तोरे आमी बोलिल वचन कोटि कोटि जन्मे जत आछे पाप तोर आज यदि ना करीमु सब दाय मोर। दाय दाय मतलब मैं जिम्मेदारी, अब सारा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और फिर कहते हैं तो सब आरा मुखे मुई करीब आहार तोर देहे होई बेको मोर अवतार। भगवान अपने भक्तों के द्वारा खाते हैं, यज्ञ उनका जिह्वा है और ब्राह्मण के मुख या वैष्णव के मुख जो हैं वो उनका जिह्वा है। तो जब हम भक्तों को खिलाते हैं, मद भक्ता पूजा व्यधिका, इसीलिए भक्तों की सेवा, हम अपने आप को भक्त मानते हैं, महान भक्त मानते हैं, पर अगर भक्तों के भक्त नहीं है, आदि पुराण में भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का भक्त नहीं है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। पर जो मेरे भक्तों का भक्त है, क्यों? क्यों पेट फाड़ के खिलाओगे? पेट फाड़ के खिलाना मतलब गलत तरीके से खिलाना, मुंह से खिलाना पड़ता है, तो मुंह में डालना पड़ता है। यानी भक्त प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हुए। हम देखेंगे जगाई मदाए किस तरह से हर एक व्यक्ति की सेवा करना शुरू किए, इसके बाद इस प्रसंग के बाद क्या परिवर्तन, कहां से कहां। प्रभु रो सुनिया वाक्य जगाई माधाई आनंदे मूर्छित होई पड़िला तथाई। अगर हम मूर्छित नहीं हुए इसका मतलब एक्चुअली कृपा नहीं मिला हमको। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार कुरिले चित्ते पावे चमत्कार। चमत्कार हो जाएगा आपको, बाप रे, जो करोड़ों जन्मों की तपस्या से देवताओं को नहीं मिलता वो ये एक इंस्टॉलमेंट में ऐसे दे दे रहे हैं पूरा। सही में हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं इसीलिए थोड़ा ऐसा बेहोश हो रहे हैं, आंखें बंद हो रही है। मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम भरे। मोह गेला, कृपा मिली और कृपा समझ में आई, इसका पहला इंस्टॉलमेंट है मोह गेला, नष्टो मोह। अर्जुन कहता मैंने गीता सुना समझा, नष्टो मोह। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब अभी तीन चीज समझ में आया, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। मोह क्या था, मैं स्वतंत्र हूं मैं ईश्वर हूं, और मोह गया मतलब क्या, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध ज्ञान। और अभिधेय यानी भक्ति, और प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, इतना सब कुछ कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम में ही सेवा। तो जिस दिन ये समझ में आ गया संबंध अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान, उस दिन एक्चुअली कृपा हमको मिली। मोह गेला दुई जनो आनंद सागरे, और इसका परीक्षा क्या है कि मोह दूर हो रहा है। अगर मोह दूर हो रहा है, मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे, इसलिए प्रभुपाद कहे चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, देन यू विल बिकम हैप्पी। सही में आप मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे बुझी आज्ञा करिले ना प्रभु विश्वम्बरे। दुई जने तुली लह आमर बाड़ीते कीर्तन करिब दुई जनेर सहिते। सीधा उचलून, पहले पहले वो उचलते थे सबको, अभी उचलून चला हमचा हमचा घरी। कहां ये लोग और कहां वैकुंठ धाम, जहां जिसके हृदय में भी लेश मात्र में भी भौतिक इच्छा हो उसको प्रवेश नहीं था उधर। शुद्ध ब्राह्मण दूध पीने वाले जिंदगी भर, उनको भी प्रवेश नहीं था। और कहां जगाई मदाई को बोल रहे हैं घ्या उचलो चला। ब्रह्मार दुर्लभ आजी ए दोहारे दिवा, एई दुई रे जगतेर उत्तम करिवा। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्त मुक्तात्माओं के लिए भी दुर्लभ है, कोटि मुक्तात्माओं में विरला एक कोई ये प्राप्त कर सकता है जो जगाई मदाई को बिना प्रयास किए, प्रयास तो छोड़ो मार खे प्रेम दे, मार खा के प्रेम दिया, भक्ति किया प्रेम दिया, ठीक है यार, जन्म जन्म से भक्ति, बहु नाम जन्मानाम अंते, भक्ति किया चल प्रेम दिया ठीक है, कुछ नहीं किया चुपचाप बैठा था भीख मांग रहा था दिया चलेगा, वो भी थूका उसको प्रेम दिया, दिस इज टू मच, मारा खून निकाला उसके बाद प्रेम, मतलब ये इससे बढ़कर कोई ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिर कृपा ए दुई परोशे जे करिला गंगा स्नान, ए दुई रे बोली बे को गंगार समान। गंगार परश होइले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। ये वैष्णव का गुणगान है। जिस व्यक्ति को देखने से, स्पर्श तो दूर की बात, लोग कपड़े के साथ गंगा में स्नान करते थे क्योंकि कपड़ा भी अशुद्ध हो गया, उस व्यक्ति को भी देखने के बाद गंगा स्नान से ज्यादा लाभ मिल गया। हरिदास ठाकुर की भी यही महिमा है, जिस वेश्या को उन्होंने वैष्णव होइला महांती, बड़े बड़े लोग को तार देखी बारे आंती, बड़े बड़े लोग देखने आते थे कौन सी ये वेश्या है जिसको हरिदास ठाकुर ने कृपा की। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद इच्छा मुई जानी है निश्चय। ये बार बार महाप्रभु याद दिला रहे हैं कि इससे हुआ है समझ लो। जागाई माधाई सब वैष्णव धरी, वैष्णवे धरिया प्रभुर बाड़ीर अभ्यंतरे गेला लैया। आप तो गण संभाईला प्रभुर सहिते, पड़िला कपाट कारो शक्ति नहीं जाईते। महाप्रभु के कीर्तन में किसी को प्रवेश नहीं था, जैसा विरजा को पार करके वैकुंठ में जाना मुश्किल है, बंद किया दरवाजा तो किसी की हिम्मत हो आ जा अंदर। और अब ये दोनों उनको भक्त लोग ही ले जा रहे, आ जाओ योग्य बन गए तुम लोग, कहां से कहां आ गए लोग। वसीला असिया महा प्रभु विश्वंभर, दुई पाशे शोभे नित्यानंद गदाधर। महाप्रभु श्री विश्वंभर विराजमान झाले, श्री नित्यानंद प्रभु व श्री गदाधर पंडित त्यांच्या दोन्ही बाजूंना शोभून दिसत होते। सम्मुखे अद्विता बसे महापात्र राज, चारी दिगे बैसे सब वैष्णव समाज। त्यांच्या समोर तेजस्वी श्री अद्वैताचार्य बसले आणि सर्व
पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास गुरुडाई रामाई श्रीवास गंगादास वक्रेश्वर पंडित चंद्र शेखर आचार्य ये सब जाना ये चैतन्य र सर्व कार्य
किनके साथ अभी बैठे देखो। एक दिन पहले कैसा संग था उनका, किनके साथ बैठते थे, कहां बैठते थे, क्या करते थे, क्या बातचीत होता था, और आज कहां है, कितना समय लगा, कुछ घंटे।
अनेको महांतार चैतन्य वेढ़िया आनंदे बसिला जगाई माधाई लैया। लोम हर्ष महाश्रु कंप सर्व गाय जगाय माधाई दुई गड़ागड़ी जाय।
जगाय माधाईच्या शरीरावर रोमांच हर्ष अश्रु कंपन इत्यादी सात्विक भाव प्रकट होताना दिसले। ते दोघे जमिनीवर गडबडा लोडू लागले।
कार शक्ति बुझीते चैतन्य अभिमत दुई दस्यु करे दुई महाभागवत।
अद्वैताचार्य ने बोल दिया था पहले, जब हरिदास ठाकुर ने कंप्लेंट किया ना, कैसा पार्टनर, कंप्लेंट के रूप में गुणगान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु का कि ऐसा पागल आदमी है, ऐसे ले लिया गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को कि किस कहीं भी जाता है कुछ भी करता है, एक लेश मात्र डर नहीं है। और अद्वैताचार्य जब सुने तो बोले तू ही एक थोड़ा अलग आदमी है, नित्यानंद पियक्कड़ है, तू पियक्कड़ों के साथ ही रहेगा ना। वो देखो 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 बहुत जल्दी दोनों पिए हुए ना, पिए वाले हमेशा पीने वालों का साथ रहते हैं। बोले नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद आनंद का सागर में डूबे हैं, बहुत जल्दी ये दोनों भी इनके साथ पूरे नशे में। और यही है लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय जगाई माधाई दुई गड़ागड़ी। पहले भी गड़ागड़ी होते थे, अभी भी गड़ागड़ी, सिर्फ नशा का ब्रांड बदल गया। पहले काम ब्रांड था, अभी प्रेम ब्रांड है।
तपस्वी सन्यासी करे परम पाखंड यही मत लीला तान अमृतेर खंड। इहाते विश्वास जार से कृष्ण पाय इथे जार संदेह से अध्य पाते जाय।
इसीलिए कहते हैं भाई विश्वास के साथ सुनो, विश्वास के साथ सुनो इसको। श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम यही हटेते बिकाय। ये ऐसा अद्भुत हुआ था क्या, इतना परिवर्तन हो सकता है एक क्षण के अंदर, ऐसे अधम योनि से सीधा सीधा भगवान के पार्षदों के साथ संकीर्तन में गोलोकीय और प्रेम धन उसके साथ। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। संशय जो है गाड़ी के ब्रेक जैसा है, और श्रद्धा जो है वो एक्सेलरेटर। अगर भक्ति की गाड़ी आगे बढ़नी है तो श्रद्धा, आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि भाव, प्रेम, प्रेम तक पहुंच जाएगा गाड़ी श्रद्धा से लेकर। पर अश्रद्धानश्च संशयात्मा, पर संशय होता है, क्यों संशय होता है, अनर्थों के कारण। इसीलिए उत्साहात निश्चयात धैर्यात, और निश्चय है श्रद्धा है इसका सबूत क्या है, दो चीज। जिसका निश्चय है कितना भी निरुत्साही वातावरण क्यों ना हो अपना उत्साह नहीं खोएगा, उसे विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं जब संशय होता है तो उत्साह घट जाता है किसी चीज में। आपको पता चला कि जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वो बैंक लूटने वाला है, तो फिर उत्साह नहीं होता है वहां बैंक डालने में। कल ये भी चला गया तो मेरा पूरा सब पानी में चला जाएगा। आप एक रस्ते में जा रहे हो, वो रस्ते कोई बोलता है मालूम नहीं वो जाता है कि नहीं पूना। आप पूना जा रहे हो और बोलता है किधर जाने का, पता नहीं, ये भी जा सकता है वो भी जा सकता है, कोई गाड़ी ले रहा है। कैसा आप एक्सीलेटर दबाओगे जब तक शंका है, जितना दूर जाऊंगा उतना वापस आना पड़ेगा फिर। तो उत्साह नहीं है इसका मतलब कहीं शंका है, और जब विश्वास है तो पूरा उत्साह और धैर्य। भले उत्साह दिखा रहे पर मिल नहीं रहा है कुछ, अरे कितने समय उत्साह दिखाने का, मुकुंद जैसा होना चाहिए, करोड़ों जन्मों तक उत्साह दिखाने के लिए तैयार। अगर करोड़ों जन्मों के बाद मुझे चैतन्य की चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिलेगा, कृपा मिलेगा, तो 1 करोड़ जन्म तक मैं तैयार हूं उत्साह के साथ कीर्तन करने के लिए। क्यों? इट इज वर्थ इट, चलता है। 1 करोड़ जन्म की भक्ति कुछ भी नहीं है इस तुलना में कि महाप्रभु के कृपा मिल जाए। यानी महाप्रभु की कृपा क्या है? अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम। जगाई माधाई दुई जने स्तुति करे सभार सहित सुने गौरांग सुंदरे। ये सुनिए, क्यों ये प्रार्थना बड़ा मत प्रभु जी, वो प्रार्थना तो सबसे बोरिंग है, वही है ना कृष्ण महान है आप सर्वव्यापी हो ये हो। प्रार्थना जब आता है ना तो प्रार्थना कहां खत्म होता है, लास्ट श्लोक देख के फिर कथा शुरू करो। पर भागवत में बार 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 प्रार्थना है। कुंती महाराज की प्रार्थना, भीष्म पितामह की प्रार्थना, इनकी प्रार्थना, उनकी प्रार्थना। ये प्रार्थना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये साक्षात्कार वाक्य है, ये डायरेक्टली देख रहे हैं, आंखों देखा हाल, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो अनुभव किए हैं वो बोल रहे हैं, और वो बोल नहीं रहे। सचमुच में जो बोल रहे हैं वो तो एक बूंद है, कोई पी रहा है पी रहा है पी रहा है, पीते पीते 2 बूंद इधर से गिर गया, एक क्या बोलते कुछ छींटे। इस तरह से जो आनंद का वो आस्वादन कर रहे हैं जगाए मधाए, कुछ छींटे निकली हुई है, कुछ छींटे प्रार्थना के रूप में। और ये प्रार्थना हमें एक बूंद खाने के बाद समझ में आता है क्या पी रहा है वो। कोई पी रहा है और उसके बाद में ग्लास में इतना बचता है ना, उसको पीने के, ओ इतना तू पिया, यही था, अच्छा था ये। तो एक 2 छींटे गिरी हुई है, ये उनकी प्रार्थना है। आप समझ लो क्या आस्वादन कर रहे हैं वो। शुद्धा सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय बसिला चैतन्य चंद्र प्रभुर आज्ञाय। और यहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं शुद्धा सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय। ये क्या है शुद्धा सरस्वती? सरस्वती का मतलब सरस्वती जी जो है वो ज्ञान, इसीलिए आप देखेंगे सरस्वती के हाथ में एक पुस्तक है और दूसरा वीणा है और सफेद कपड़े पहनी हुई हो। तो जो पुस्तक है ज्ञान और वीणा है जो कला है, सारी कलाएं सरस्वती जी की कृपा है। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। हमेशा कोई भी शिक्षक सिखाता है कुछ विद्या तो बोलते सरस्वती को प्रार्थना करो, तब सरस्वती तुम्हारे हाथों पे बैठेगी, जिह्वा पे बैठेगी, जो जो भी बजा रहे उसके उस पे बैठेगी वो। और वो जब आएगी तो 2 प्रकार की सरस्वती बताई गई है, शुद्धा सरस्वती और विद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती मतलब कौन? शुद्धा सरस्वती मतलब वो सरस्वती जिसके मालिक भगवान है, जो ज्ञान जो कला भगवान की प्रसन्नता के लिए शुद्ध तरीके से और कोई इच्छा नहीं, यश की इच्छा नहीं, नाम की इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है या बोला जाता है, वो है शुद्धा सरस्वती। और उसके मालिक कृष्ण है, कृष्ण को आस्वादन होता है वो। और विद्या सरस्वती मतलब मिश्रित, उसमें मैं भोगता हूं मेरे आनंद के लिए अपना गुणगान। इसीलिए नारद मुनि जब उपदेवता उपबरहण के रूप में जब वहां उनको आमंत्रित किया गया प्रजापतियों के सभा में हरि कीर्तन के लिए, और वहां सारे अप्सराओं के साथ जाकर वो देवी देवताओं का गुणगान कर रहे थे, उन्हें शाप मिला उनको। क्यों? क्योंकि सचमुच में न भगवान का गुणगान था न देवी देवताओं का, अपना गुणगान था। वो देख रहे थे कितनी स्त्रियां मेरी ओर देख रही, और इसीलिए उन्हें शाप मिला। प्रजापति दक्ष, प्रजापति लोग देख सकते, समझ सकते थे, और बोले तो योग्य नहीं है सरस्वती को संभालने के लिए, तो वो अहंकार निकालने के लिए। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदपुमान, श्रुत यही श्रुत है, ये बढ़ता हुआ नशा है, वो नशा उतारने के लिए बड़े कृपा पूर्वक वो शाप दिया। तो जब भी हम समझ लेते हैं, इसीलिए महाप्रभु बार बार कहते हैं तृणादपि सुनीचे न तरोरी वशेषण अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरी। ये कीर्तन ज्ञान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा कीर्तन है, संकीर्तन के द्वारा है, नाच के द्वारा है, कला के द्वारा है, ड्रामा के द्वारा, जो भी है, ये सब कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स। ये शुद्धा सरस्वती है एक्चुअली। इसीलिए जब हम कल हम चर्चा कर रहे थे परसों, जब केशव कश्मीरी महाप्रभु के सामने जब भी वो बोलता था, सरस्वती उसकी जीवा पर बैठती थी। एक क्षण के अंदर 100 श्लोक बना दिया उसने। और जब बाद में महाप्रभु के सामने स्तब्ध रह गया, कुछ बोल नहीं पाया, जब महाप्रभु ने उसको ऐसे उड़ा दिया, उसमें से गलतियां निकाली, बोले मेरे श्लोक में गलतियां कैसे आई, सरस्वती गलती की? उस दिन रात को सो नहीं पाया, फिर थोड़ा जैसा झपकी लगा, सरस्वती प्रकट हुई। बोले आज तक तू जब भी बोलता था और मैं तेरे जिह्वा पर बैठती थी, सरस्वती का भक्त था वो, रो रहा था सरस्वती के सामने, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या मैंने कुछ गलती की, आपके प्रति कुछ अपराध किया? बोले अपराध नहीं किया, तूने अच्छा पूजा किया, इसीलिए आज जो मैंने तुझे किया वो मेरा कृपा था, अब तक जो था वो विद्या सरस्वती थी, वो कृपा नहीं था, तू पूजा किया मैंने तेरे को फल दिया, पर अब तेरे पूजा से प्रसन्न होकर आज तुझे मैं अपने प्रभु के सामने ले गई और उनको तू अपना दिखा रहा है, इसीलिए मैं वापस आ गई वहां से, उठ पड़ी वो मुझको, मेरा सारा ज्ञान वहीं से आता है, आज तुझे असली कृपा मिली मेरी। तो ये शुद्धा सरस्वती है। शुद्धा सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय बसिला चैतन्य चंद्र प्रभुरा आज्ञाय, प्रभु महाप्रभु की आज्ञा से शुद्धा सरस्वती अब जगाय माधा के जिह्वा पर ऊपर बैठी हुई है, और अब जो गुणगान कर रहे हैं वो अपने मूल तत्वतः स्थित होकर प्रभु का गुणगान हो रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि ये, हां एनीवे उसके पहले आएगा, दोनों श्लोक में आएगा, नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्व देखी ल न दुई जने जार जेन तत्व। एवं यो वेति तत्वतः, यहां वही है, नित्यानंद चैतन्य र प्रकाश एकत्व देखिल न दुई जने जार जेन तत्व। जब कृपा, अगर आप तत्वतः भगवान को जान रहे हो, तत्वतः अपने आप को जान रहे हो, तत्वतः भक्ति को जान रहे हो, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको कृपा मिला है। और अगर अपना जीव तत्व समझ में आ गया तो कभी अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि समझ जाएगा मैं कितना, एक बाल के जो अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा का एक हूं टुकड़ा हूं, किसको अहंकार कभी होगा जिंदगी में? और जो कुछ भी आ रहा है भगवान की कृपा से हो रही है, भक्ति ही एकमात्र तत्व है, भगवत तत्व। तो ये तत्वतः जान गए थे और इसीलिए प्रभुपाद, यानी कृपा मिला है तो तत्वतः जाने।
परम करुणा पहुदुई जान निताय गौर चंद्र सबयवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद।
नित्यानंद चैतन्य और प्रकाश एकत्व, दोनों का मतलब जब उसके ऊपर टॉर्च लाइट डाला तो असली में समझ में आता है, ओहो ये रस्सी है, मेरे को सांप लगा था, ये कुछ और लगता है, पर जब प्रकाश होता है तो समझ में आता है। अब उनको समझ में आ रहा है और वो गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा अगर मिलेगी, उनकी कृपा उनके तात्पर्यों में है, पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा क्यों ये इतना महत्व है।
से मत स्तुति करे दुई महाशय जे स्तुति सुनी ले कृष्ण भक्ति लभ्य है।
इसीलिए आज सोचा ये थोड़ा प्रार्थना सुनेंगे कम से कम, ये आइक तो समझ तो नहीं, सौभाग्यवश समझ तो आणि उतार तो, उतार तो भी नहीं, फक्त आइक तो कितना रिलीफ है हमारे लिए। वो भी कलयुग के लिए तपस्या है, खास करके 10:15 होने के बाद, 8 बजे शुरू हुआ क्लास, 10:15 हो गया तो क्या महाराज आप सुना तो ठीक है आपको आनंद आ रहा है, पर हमको क्यों इतना तपस्या करा रहे आपको अपना रिहर्सल हो गया प्रैक्टिस का, हाँ नेट प्रैक्टिस हो रहा है पर आप हमारा क्या, हम उठा उठा के बॉल लाना पड़ता है हमको, आप बैटिंग कर रहे हो बस जो फील्डिंग करता है ना वो कभी नहीं कर, बॉलिंग अच्छा लगता है थोड़ा एटलीस्ट क्योंकि विकेट ले सकते हैं, अब बैटिंग वाला खड़ा रहता है आराम से घुमाता रहता है, फील्डिंग करते हो हमेशा बच्चे लोगों को मैं देखता हूं फील्डिंग किसी को अच्छा नहीं लगता, खास करके तगड़ा बैट्समैन हो तो, आप सब फील्डर हो, तगड़ा बैट्समैन तो नहीं हो, थोड़ा खुजली है बैटिंग करने का
सही मत स्तुति करे दुई महाशय, वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान आचार्य कह रहे हैं दुई महाशय, एकाएक महाशय बन गए कृपा मिला तो। जे स्तुति सुनी ले कृष्ण भक्ति लभ्य है,
अभी उनकी स्तुति सुनिए।
जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर।
जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, विश्वंभर को धरने वाले 9 अलग अलग 10 अलग अलग तरीके से शैया, उनकी शैया पूरे पूरे भगवत धाम जो है वो नित्यानंद प्रभु ही है। उनकी धोती, उनके आभूषण, उनकी छत्री, सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही है। आज हमारे एक भक्त ने एक खास गौर निताई के लिए एक छतरी दी है यानी नित्यानंद प्रभु की कृपा है, प्रेरणा मिली उनको। तो जो नित्यानंद प्रभु सेवा करते छतरी, वही छतरी नित्यानंद प्रभु को है। तो नित्यानंद प्रभु अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु की कृपा मिलती है और इसीलिए हमेशा तुरंत वो बोलते हैं वो विश्वंभर धर। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जानते हैं किस तरह से महाप्रभु की सेवा करना है।
जय जय निज नाम विनोदाचार्य जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य। निज नामामध्ये आनंद घेणाऱ्या आणि त्या नामाचा
अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ताकि आप लोग अगर बाय चांस भी थोड़ा झपकी लग गया तो उठ सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जय जय निज नाम विनोद आचार्य, निज नाम में विनोद लेने वाले आचार्य। तो हम भी अपना अपना नाम में आचार्य हैं तो आनंद ले सकते हैं, ये क्यों ऐसा कहा गया है? अनुवाद का है, तो गौरचंद्र को ऐसा क्यों कहा है? निज नाम विनोद आचार्य, वही कृष्ण अब एक भक्त के रूप में कृष्ण के नाम को कैसा लेना है ये आचार्य के रूप में सिखा रहे हैं। तीन आचार्य आए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, महाविष्णु है वो, नित्यानंद प्रभु भी महाविष्णु पहले प्रकट स्वरूप है, संकर्षण कारण तो शाही गर्भोदशाही क्षीरोपदिशाही शेषश्च सब यही है। खुद सिखा रहे हैं निज नाम विनोद, किस तरह से अपने नाम में आनंद लेना है। भगवान ही अपने नाम का आनंद आस्वादन करने के लिए आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना नाम में आनंद लें, महाजनो ये न गत सपन था नहीं, महाप्रभु अपना नाम नहीं लेते थे कभी, ऐसा नहीं कि हे गौरांगा नहीं बोलते थे वो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, भज गौरांगा कहो गौरांगा वो बोलते थे नित्यानंद प्रभु। निज नाम भगवान किस तरह से नाम का आस्वादन करना है ये उन्होंने सिखाया। जय जय जगन्नाथ मिश्रेर नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण।
श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन आमचा जय जयकार असो, श्री चैतन्य महाप्रभूंची शरण स्वीकारलेल्या श्री नित्यानंद प्रभूंचा जय जयकार असो।
जय जय शशीपुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य रो बंधु।
करुणा सिंधु श्री शचिनंदनांचा जय जयकार असो, श्री चैतन्य देवाचे बंधु श्री नित्यानंद प्रभूंचा जय जयकार असो।
जय राजपंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर।
राजपंडितांची सनातन मिश्रांची कन्या विष्णुप्रिया देवींचे प्राणेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभूंचा जय जयकार असो।
अभी एक आपसे और एक प्रश्न पूछता हूं, इतना बार जय जयकार क्यों, एक बार बोल दिया ना जय जय नित्यानंद जय जय चैतन्य, इतना बार क्यों बोल रहे हैं? हमारा शुद्धिकरण के लिए, प्रभु जी बोल रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए। माइक माइक में बोलिए। ये भगवत गीता के एक श्लोक में जब अर्जुन विराट स्वरूप देखता है वो बार बार वही बोलता है, दो बार एक ही चीज दोहराता है वो, थोड़ा अलग रूप में। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य लिखते हैं, ये जो पुनरुक्ति जो है ये एक बहुत ज्यादा भर के आया हुआ प्रेम का लक्षण, ओवरफ्लो। जब ओवरफ्लो होता है ना फटफट फटफट पानी गिरता रहता है, इतना आनंद है कि वो वही चीज दोहरा रहे बार बार अलग अलग तरीके से। इसमें मतलब ये पुनरुक्ति एक प्रकार का गलती है, बार बार वही बोलना मतलब सामने वाला मूर्ख है इसीलिए बार बार समझाना पड़ता है। टीचर बार बार कब बोलती है, सामने वाला बच्चे समझते नहीं है। तो पुनरुक्ति करना मतलब एक प्रकार का गलती है कुछ निबंध में बार बार बोलना, पर यहां उसका एम्बेलिशमेंट इसका गुणगान है ये, क्योंकि इतना आनंद हो गए कि वही वही चीज बार बार बोल रहे हैं।
से जय प्रभु तुमी यत करो काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवाधिराज।
वैष्णवाधिराज मतलब एम्परर सम्राट, वैष्णवों का सम्राट। क्यों? क्योंकि भगवान खुद जब सेवक भगवान, ये सेवक भगवान नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान और महाप्रभु सेवित भगवान, तो जब भगवान ही वैष्णव बन के आते हैं तो उस समय जो कृपा करते हैं, उस समय जो सिखाते हैं, पातिया छे नाम हाटा जीवेरा कारण, उन्होंने नाम हाट खोला है, दिखाया है कैसे प्रचार करना चाहिए एक गुरु के रूप में। और इसीलिए वैष्णवाधिराज,
जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर प्रभुर विग्रह जय अवधूत वर। जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र जय जय सहस्र वदन नित्यानंद।
श्री अद्वैताचार्यांचे जीवन श्री गौरचंद्रांचा जय जयकार असो, सहस्र वदन श्रीमंत नित्यानंद प्रभूंचा जय जयकार असो।
जय गदाधर प्राण मुरारी ईश्वर जय हरिदास वासुदेव प्रियकर।
श्री गदाधर पंडितांचे प्राण व मुरारी भक्तांचे ईश्वर हे गौर नाय आपला जय जयकार असो। श्री हरिदास व वासुदेव यांचे प्रिय श्री नित्यानंद प्रभूंचा जय जयकार असो।
भगवान के साथ भक्तों का भी जय जयकार करते, कभी भूलते नहीं।
पापी उद्धारी ले जत नाना अवतारे परम अद्भुत जहा घोषये संसारे।
जगाई माता स्तुति करता पुढे म्हणाले, हे प्रभु विविध अवतारामध्ये अनेक पती पापी जनांचा उद्धार आपण केला, जगातील सर्व लोक त्याला परम अद्भुत म्हणून संबोधतात।
अभी देखिए, अब जगाई मधाय जो समझे हैं कि उनको खास कृपा मिली है, शास्त्र के आधार पर वो कह रहे हैं ये कृपा का लक्षण है। हा? के ओ कौन सा श्लोक है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते। सारे शास्त्रों का मर्म समझ गए बिना शास्त्र पढ़े भी, कृपा अगर मिल गई तो। यहां शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं कि आज तक आपने जितने लोगों का उद्धार किया है उससे हमारा उद्धार सबसे श्रेष्ठ है। मतलब ऐसे पतित का कभी उद्धार नहीं हुआ है, शास्त्र के आधार पर प्रूफ दे रहे हैं वो, और ये अपनी साक्षात्कार से कह रहे हो।
पापी उद्धारी ले जतो नाना अवतारे परम अद्भुत जहा घोषये संसारे।
तो सब आप तो मानते हैं, सब भगवान सबका उद्धार करते हैं, परम अद्भुत है, पर बोलते हैं नहीं,
आमी दुई पाती के पात कीर देखिया उद्धार अल्पत्व पाइला पूर्व महिरा महिमा तुमार।
परम करुणा क्यों बोलते हैं परम करुणा,
ये यहां बता रहे हैं।
पहला प्रसंग है अजामिल का, और देखिए किस तरह से वो अजामिल को कहते हैं कि वो इतना माड़ा ठीक है उद्धार किया है, पर वो तो 10 पैसे का उद्धार था, अभी करोड़ों का है। बोले उसके सामने सब फीका पड़ गया, आपका महिमा जो था उद्धार पतित पावन वो फीका पड़ गया हमारे तुलना में।
अजामिलो उद्धारे रो जते का महत्व आमारो उद्धारे से हो पाइला अल्पत्व। सत्य कही आमी किछु स्तुति नाही करी उचिते अजामिल मुक्ति अधिकारी।
आमी खोटी स्तुति करीत नाही, सत्य सांगतो आपण, मुक्ति प्राप्त करण्यासाठी अजामिल अधिकारी ठरले उचितच आहे।
देखिए कभी कभी स्तुति क्या होता है, अति स्तुति हो गया ना तो चापलूसी जैसा लगता है वो। आप प्रभु जी आप प्योर डिवोटी, आप प्योर डिवोटी, किस लिए क्या चाहिए बोल तेरे को कुछ तो चाहिए, इतना पीछे क्यों पड़ा है, तब से प्योर डिवोटी। उधर जाके बोलता मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, मेरे सामने आके बोलता है प्योर डिवोटी हूं मैं। तो कन्नड़ में एक कहावत है, करेला और नीम, करेला नीम को बोल रहा है क्या मीठा है तू, और नीम करेला को बोलता है तू भी कोई कम नहीं है यार। तो दोनों एक दूसरे को साक्षी दे रहे तू कितना महान है, तू भी कम नहीं है। तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं दो पॉलिटिशियन खड़े होके एक नंबर के दोनों हैं, और बोलते ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया, आप भी कोई कम नहीं है। पर बोलते ऐसा नहीं है, आपने हमको उद्धार किया इसीलिए आप गुणगान कर रहे हैं। सत्य को ही आमी की चू स्तुति नहीं करी, स्तुति नहीं कर रहे तो स्तुति कर रहे हैं, स्तुति मतलब अति स्तुति नहीं कर रहे हैं। उचित ही अजामिल मुक्ति अधिकारी, अरे अजामिल को मुक्ति दिया वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका अधिकार था उसको। भागवत में उसका हम इतना गुणगान करते हैं, पोषणम, भागवत में 10 तत्व है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः ऊतयः, और पोषण, पोषण जो है उसका जो है अजामिल की कथा से शुरू होती है। परीक्षित महाराज मतलब बोले नरक से निकलने का तरीका क्या है, बोले अजामिल के जैसे, बोले मुक्ति का अधिकारी था। कैसे? कोटि ब्रह्मवदी यदि तोर नाम लये सद्य मोर तार वेदे यही सत्य कहे। यानी कानी च पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति पदक्षिणा पदे पदे। हे नो नाम अजामिल कैला उच्चारण ते चित्र न हे अजामिल र मोचन। तो वो नाम लिया कम से कम आपका, भले अपना बच्चे का नाम लिया हो, पर लेते लेते जब यमदूत को देखा तो भगवान का स्मरण हुआ उसको, क्योंकि पहले अच्छा की कार्य करता था वो, बाद में गलत संग में पड़ गया था। वेद सत्य पालिते तुमार अवतार मिथ्या होए वेद तबे ना कोई ले उद्धार। क्या हमने आपका नाम लिया? हमने आपका नाम नहीं लिया, फिर भी कैसे उद्धार कर दिया हमारा? अरे नाम लेना तो दूर की बात, आमी द्रोह कैलु प्रिय शरीरे तोमार तथापि हो आमी दुई करिले उद्धार।
परंतु आमी इतके अधम की आपल्या दिव्य श्री अंगावर आघात केला तरी देखील आपण आमचा दोघांचा उद्धार
केला। ये खासियत है, कुछ भी योग्यता नहीं है बल्कि उल्टा काम किए फिर भी कृपा मिला, मार खे प्रेम दे। एबे बुझी देखो प्रभु आपनार मने कत कोटि अंतर आमारा दुई जने। अजामिल कहां और हम कहां, इस तरह से बोल रहे हैं। हमने आक्रमण किया और आपकी कृपा, कितना अंतर है इसका।
नारायण नाम सुनी अजामिल मुखे चारी महाजन आईला से ही जन देखे। आमी देखी लाई तोमा रक्त पाड़ी अंगे सांग पांग अस्त्र पारी सद सब संगे।
देखिए अजामिल ने नारायण का नाम लिया और नाम सुनने के बाद चार विष्णु दूतों को देखा बस, और हम नाम नहीं लिए बल्कि नित्यानंद प्रभु के शरीर पे आघात किया और आप खुद भगवान उनके प्रकाश सारे अवतारों का स्रोत नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य भगवान, भगवान के सारे अवतार, भगवान के सारे प्रकाश, भगवान के सारे भक्त सब होलसेल हमको मिल गया। उनको तो सिर्फ चार दूध दिखे बस, और हम लोग ना नाम लिया ना कुछ, और पूरे के पूरे होलसेल मार्केट में प्रवेश मिल गया हमको सब कुछ एक साथ।
गोप्य करी राखी छिले ए सब महिमा एबे व्यक्त होइला प्रभु महिमार सीमा। एबे होइला वेद महाबलवंत एबे ए बड़ाई करी गाइब अनंत। एबे से विदित होइला गोप्य गुण ग्राम निर्लक्ष उद्धार प्रभु इहार से नाम।
कॉजलेस डिलीवरेंस, हम लोग बोलते हैं ना कॉजलेस, मतलब किसी का कारण ही नहीं है उसका। अरे अजामिल तो कुछ तो कारण है, नारायण का नाम लिया मरते मरते, म्रियमाणो हरेर नाम घृणन पुत्रोपचारितम, मरते वक्त कम से कम लिया, तो हम लोग वो भी नहीं, अकारण। तो क्या कारण है हमको आपने कृपा दिया, क्या कारण है, हमने कुछ भी किया क्या, कुछ भी अगर एक थोड़ा भी कुछ किया हो तो सही, कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा काम किया हमने, प्रहार किया हमने, कारण क्या है इसका, निर्लक्ष्य, निर्लक्ष्य उद्धार, कॉजलेस, इसका कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ आपकी कृपा बस, प्योर अकारण।
जदि हे न बोलो कंस आदि दैत्य गण तहारा वो द्रोह करी पाइला मोचन।
अभी दूसरा उदाहरण दे रहे, अजामिल का हो गया, अजामिल का प्रसंग जो आया था लॉयर के जैसा, कोई अगर कोर्ट में डाला तो उसको उसने चूर चूर कर दिया। अब अगला कोई अगला आर्ग्यूमेंट, ये हमारा उद्धार से कोई और ज्यादा है, तो कोई कहेगा हाँ कंस का तो उद्धार किया ना, शिशुपाल का उद्धार किया, तो उसको चलो वो कोर्ट केस को ले रहे, अभी जो भी एलिगेशन आ रहा है उसको ले रहे हो।
जदि हे न बोलो कंस आदि दैत्य गण तहारा वो द्रोह करी पाइला मोचन। कत लक्ष आते तथि देख निज मने निरंतर देखी लेखो से नरेंद्र गणे।
हाँ, कंस ने कितने बार देखा कृष्ण को, कितने बार देखा सब राजाओं को, भक्तों को कितने बार देखा।
तोमा सने यूझी लेको क्षत्रिय धर्मे भय तोमा निरंतर चिंती लेको मर्मे।
दूसरे कारण म्हणजे क्षत्र धर्माचे पालन करून तुमच्याशी त्यांनी युद्ध केले। तिसरे कारण तुमच्या भीतीपोटी ते मनातून तुमचे चिंतन सतत करीत होते,
हमेशा आपका स्मरण कर रहे थे, वैयक्तिक रूप से आपके साथ लड़ाई किया उन्होंने, आपको आनंद दिया लड़ाई का, कृष्ण को आनंद आया किसी के साथ लड़ने से, भगवान जब लड़ते हैं आनंद आता है, जैसे राजा लोग मल्ल रखते थे अपने घर में, उनके साथ कुश्ती करना, तो कुश्ती जो है कुछ लोग पैसा देकर कुश्ती करा देते उसके साथ, तो आनंद देते थे, उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस होता था और आनंद आता था, तो भगवान की लड़ने की इच्छा हुई इसीलिए इन दोनों को भेजा, तो उनके साथ लड़ाई की और वो हमें 24 घंटे आपका स्मरण करते थे।
हाँ, तथापि नारी ले द्रोह पापो एडी एडाईते पड़िला नरेंद्र सब वंशेर सहिते।
वो तो मर गए, एक तो उनको आपने गला काट दिया, हमारा आपने गला नहीं काटा, उनके सारे वंश का नाश हो गया, पूरे जितने सारे दैत्य से सबको मार दिया, पर हम किसी को नहीं मारा आपने।
तुम्हारे देखी ते निज शरीर छाड़ीला तबे कोनो महाजन तारे परशिला।
तुमच्याकडे पाहता पाहता त्यांनी देह सोडला, त्यावेळी कोणत्या सज्जन महापुरुषाने त्यांना स्पर्श केला सांगा
बरे। वा 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 वा, इसका उद्धार हो गया, चलो इसके चरण स्पर्श करो। कितने लोगों ने कंस का चरण स्पर्श किया, फूल पुष्प वृष्टि किए और बोले लगा जल्दी आग इसको। रावण मरने के बाद उसका भाई भी भीषण, वो बोलता मैं आजकल को नहीं करूंगा, मैं इसको नालायक था ये, फिर भगवान को बोलना पड़ा, नहीं नहीं नहीं, मर जाने के बाद उसका अपराध भूल जाना चाहिए, कर दो कर दो, ब्राह्मण था बेचारा, शरीर तो ब्राह्मण का था, पुलस्त्य मुनि का बेटा है वो, कर दो कर दो, कोई छूने की इच्छा भी नहीं थी। पर हम लोग ना छूने की बात तो दूर, दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारा भी जगाई माधाई, आज भी लोग जाते हैं ना माधाई घाट, वहां उनका मूर्ति है माधाई बैठा हुआ ऐसा, उसको दर्शन करते हैं, चरण पढ़ते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, माधाई का दर्शन हो गया, जगाई का दर्शन केला का दर्शन केला, तुम्हें का नवद्वीप आला दर्शन नहीं केला माधाई चा? आमारे देखे सबे भागवत गणे छाया छुई जयला केला गंगा जई गेला कैला कंग गंगा स्नाने सर्व मते प्रभु तोर ए महिमा बड़ कहारे भांडिवे सबे जानी ले क दृढ़ अभी तीसरा एलिगेशन माय लॉर्ड सुनो तीसरा एलिगेशन महाभक्त गजराज करिला स्तवन एकांत शरण देखी करिला मोचन
महान भक्त गजेंद्राने तुमचे स्तुतिगान केले तो तुम्हाला शरण आला तेव्हा त्याला दर्शन देऊन तुम्ही त्याचा उद्धार केला
दैवे से उपमान हे असुरा पूतना अघ बक आदि जत केहो ना हे सीमा ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूतना का उद्धार जो है जो विष देने आई थी उसको मां का स्थान दिया तो उसमें और जगाई माताई में अंतर क्या है वो भी विष पिलाने आई थी ये लोग भी मारने आए थे और उसको भी माता का स्थान मिला इनको भी अच्छा स्थान मिला तो कोई बोल सकता है ना केस यहां स्ट्रांग है पूतना का स्ट्रांग है आपका केस थोड़ा दम नहीं है बोले नहीं हमारा में हमारा केस में दम ज्यादा है कैसे छाड़ी छाड़िया से देह तारा गेल दिव्य गति भेद बिने तहा देखे कहारा शकति अरे पूतना तो मर गई उसको काट काट के टुकड़े करके जलाया उसके शरीर को तो किसको मालूम ऊपर गई वेदों में कहा गया है बस पर जो वेद नहीं पढ़ता जिसको वेदों में विश्वास नहीं है वो बोलेगा मार दिया ना उसको खत्म कर दिया ना चूस लिया ना प्राण काट काट के टुकड़े करके उसको जलाया ना अभी बोलते हो मां का स्थान मिला कि इसको मालूम ऊपर जाके कौन देखा है पर यहां ऐसा नहीं है यहां देख रहे हैं उसके बाद हम जिंदा हैं और ऐसा नहीं कि मार दिया नाच रहे हम लोग उन लोगों के साथ ही प्रेम से मतलब जो गोलोक धाम में पूतना जाके कर रही है वो हम लोग यहां यहीं बैठे कर रहे हैं जाने से पहले ही जे कोरिला ए दुई पातकी शरीरे साक्षाते देखिला इहा सकल संसारे चतेक करिला तुम्ही पातकी उद्धार कोरो कोनो रूपे लक्ष्य आछे सभाकार
ज्या ज्या पापी लोकांचा उद्धार तुम्ही केला त्या सर्वांकडे काही ना काही सद्गुण होता त्या मागे काही हेतु होता
निर्लक्ष्ये तारिला ब्रह्म दैत्य दैत्य दुई जन तुमार कारुण्य सबे इहार कारण बोलिया बोलिया कांदे जगाई माधाई एम तो अपूर्व करे चैतन्य गोसाई
अशा प्रकारे बोलता बोलता जगाई माधाई रडू लागले श्री चैतन्य महाप्रभु अशी अपूर्व लीला प्रकट करता
जते को वैष्णव गण अपूर्व देखिया जोड़ हाते स्तुति करे सभे दांडाइया जे स्तुति करिला प्रभु एई दुई मध्यपे तोर कृपा बिने इहा जानेकार बापे
ते म्हणाले हे प्रभु या दोघा मध्यप्यांनी तुमची जी स्तुति केली ती तुमच्या कृपेविना कोणी समजू शकत नाही की करू शकत नाही
मतलब किसी के बाप को भी समझ में नहीं आएगा तू क्या तेरा बाप भी हम बोलते ना तू क्या करे तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे बोल रहे तोर कृपा बिने यहा जाने कार बापे अरे वो छोड़ो उसका बाप भी नहीं समझ पाएगा तुम्हार अचिंत्य शक्ति के बुझीते पारे जखन जे रूपे कृपा करो हो जाहरे
जा प्रकारे जा रूपा तुम्ही कृपा प्रदान करता ती शक्ति
प्रभु बोले ए दुई मद्यपन आहे नहे आर आजी हईते ए दुई सेवक आमार। अभी सुनिए कितना कृपा कर रहे हैं अभी और एक्स्ट्रा बोनस।
महाप्रभु म्हणाले हे दोघे आता मद्यपी राहिले नाही आता ते माझे सेवक भक्त झाले आहेत।
सबे मिली अनुग्रह करो ए दुई रे जन्मे जन्मे आर जेन आमना पासरे।
आता तुम्ही सर्वजण त्यांच्यावर कृपा करा जेणेकरून त्यांना माझे विस्मरण जन्म जन्मांतरी होणार नाही।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उनको कृपा मिला है पर कृपा बनाए रखने के लिए बोलते हैं वैष्णव का आप लोग सब आशीर्वाद दो। यानी केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं है, वैष्णव की कृपा नहीं है, महाप्रभु हर जगह देखते हैं, रूप गोस्वामी को कृपा दिए पर बाद में सबको बोलते हैं अब सबसे आप सबके कृपा मांगो।
जे जे रूपे जार ठाई आछे अपराध क्षमिया ए दुई प्रति करह प्रसाद। सुनिया प्रभुर वाक्या जगाई माधाई सभार चरण धरी पडिला तथाई।
महाप्रभुंचे हे बोलले ऐकून सर्व वैष्णवांचे चरण पकडून जगाई माधाई त्यांना नमस्कार करू लागले।
सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद जगाई माधाई होईला निर अपराध।
तेव्हा सर्व महान भक्तांनी त्यांना आशीर्वाद दिले त्यामुळे जगाई माधाई त्यांच्या अपराधातून मुक्त झाले।
जब वो वैष्णव से अभी कह रहे उस समय भी मुक्त थे पर फिर भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने वैष्णव की कृपा ली उनको प्रसन्न किया उनका आशीर्वाद प्राप्त किया अब बोले पूर्ण रूप से निरपराध।
प्रभु बोले उठो उठो जगाई माधाई होइला आमार दास आर चिंता नाही।
महाप्रभु बोलले माधाई उठा तुम्ही आता माझे सेवक भक्त झाला आहात आता कोणतीही चिंता करू नका।
तुम्ही जई तुम्ही दुई जत किछु करिला स्तवन परम सुसत्य किछु नहय खंडन।
तुम्ही दोघांनी गायलेली स्तुती अतिशय सुंदर आहे तिचे खंडन कोणी करू शकत नाही।
महाप्रभु पर्सनली एक कोर्ट केस को बोले सारा एलिगेशन परफेक्ट इसका जो आपने ऑब्जेक्शन सर कोई नहीं बोल सकता योर ऑनर ऑब्जेक्शन। बोले नहीं आपने जो भी बोला परफेक्ट शास्त्र सम्मत है।
स शरीरे कभू कारो हेनो नाही हय नित्यानंद प्रसादे से जानी हो निश्चय।
नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले देखा और बोला अगर ये दोनों भक्त बनेंगे ना तो महाप्रभु का यश होगा। वहां से शुरू हो गया इनका उद्धार नित्यानंद प्रभु की दृष्टि।
हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलो कन करो आमी बड़ो दुखी।
इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद कृपा अवलोकन करो। सिर्फ आप कृपा अवलोकन करो। आप अगर जिस पे दृष्टि डाले तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आने का तो समय की बात है। जैसा अद्वैताचार्य ने बोला नित्यानंद प्रभु ने निश्चय किया ना देख लिया ना आंख पड़ गया ना उद्धार हो गया केवल समय की बात है गारंटी है 100%। तो हम इसीलिए खड़े होते हैं हर रोज अवलोकन करो ठीक से सामने खड़ा होना चाहिए पीछे जाके बैठना नहीं बिल्डिंग के बाहर ऑफकोर्स वहां सभी जगह देख सकते हैं। वो एक बार देवामृत स्वामी ने बड़ा अच्छा पाया बोला ऑफकोर्स इसका मतलब क्या है जैसा एक डूबता व्यक्ति रस्सी का आश्रय लेता है इस तरह से दर्शन करना बड़े आतुरता से। चैतन्य महाप्रभु ने वो आदिवासी लड़की औरत थी बूढ़ी चढ़ गई महाप्रभु के ऊपर कंधे के ऊपर गरुड़ स्तंभ के पास तो उन्होंने बोला ओ डांटने लगा गोविंद। महाप्रभु बोले डांटने लगे बोले तू आदिवासी है तू किसू डांट रहा है? बोले इतना प्रेम से देख रही है वो, काश मेरे अंदर भी ऐसा आतुरता होती दर्शन के लिए। उसे मतलब आतुर था कि उनका दर्शन हम पर पड़े और तब हमारा जीवन सफल। हम दर्शन करें तो उनका दर्शन हम होना हमारा होना चाहिए। ये और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जब तक हम उनका दर्शन, हम दर्शन करने आते हैं पर दर्शन करने नहीं आते, हम यहां आते ताकि वो हमारा दर्शन करे। क्योंकि हम दर्शन करेंगे, जैसा कई बार मैं उदाहरण दिया, अगर 5-स्टार होटल के सामने हजारों भिखारी लोग बैठे रहते, सब करोड़पति के लोगों का दर्शन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर अगर कोई करोड़पति किसी भिखारी का दर्शन करे, ओ बेचारा बहुत चिल्ला रहा है, तब हुई काम की बात। वो सबका दर्शन करने कुछ फायदा नहीं, उनका दर्शन होना चाहिए। वो बेचारा बड़े प्रेम से आ रहा है, हर रोज आके रोता 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 बहुत रोता है, चलो दे देते कुछ, बड़ी आतुरता बड़े प्रेम भाव से आ रहा है, चलो कृपा करेंगे। सशरीरे कभू कारो नाही हेनो हेनो नाही होय, सशरीरे कभू कारो हेनो नाही होय। सशरीरे मरने के बाद कृपा मिला और शास्त्र बताता है, पर सशरीरे नित्यानंद प्रसाद से जानी हो निश्चय। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा, जिस दिन उसको आंख पड़ी कृपा नित्यानंद प्रभु की, उस दिन उनका उद्धार एक्चुअली हो गया था। तो सवार जत पाप मुई नीला सब साक्षाते देखो हो भाई यही अनुभव। दुई जनार शरीरे पातक नाही यार इहा बुझाई ते होइला कालिया आकार। कालिया कालिया बन गए हो, गौरांग महाप्रभु कालिया बन गए। यहा बुझाई थे होइला कालिया आकार। प्रभु बोले तुमार तुमरा आमारे देखो के न अद्वैत बोलो ए श्री गोकुल चंद्र जेन। उस समय मजाक नहीं गया, बड़े प्रेम से मजाक कर रहे, बोले मैं कैसे दिख रहा हूं? बोले गौरांग अभी काला होने के कारण कृष्ण जैसे दिख रहे हैं आप। ये काला कैसे? अद्वैते प्रतिभा सुनी हासे विश्वंभर हरि बोली ध्वनि करे जत अनुचर। और बाद में बोलते हैं, अभी कारण बोल रहे क्यों मैं काला हो गया। प्रभु बोले काला देखो दुई रो पात के कीर्तन कर सब जाऊ को निंद के। हा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली बोलते हैं प्रभु बोले काला देखो दुईरो पातके कीर्तन करह सब जाऊ को, जाने तो किधर जाएगा ये सब, कहीं तो डिस्पोज करना पड़ेगा ना, ये सब कचरा फेंकने के लिए भी पूरा सिस्टम होता है, कहीं भी फेंक दिया नहीं चलेगा, तो कहां फेंक रहे हैं? जाऊ को निंदके, जो निंदा करता है भक्तों की उसके पास जाता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं वैष्णव का ऐसा कैसा हो गया कि वैष्णव निंदा करता है तो फिर पाप आने की संभावना है। तो निंदा मतलब क्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं, एक व्यक्ति में अगर कुछ दोष नहीं है और वो दोष आप थोपते हो उसके ऊपर, इसको कहते हैं निंदा। दोष नहीं है और वो दोष हमने थोप दिया उस पर तो निंदा हो गया। आप बोलेंगे नाई प्रभु जी मैं ऐकला थे बगा बेचारा ये नहीं संगीतले यानी संगीतले यानी संगीत सुना होगा क्या मालूम कंफर्म है कि नहीं नाई हो बगी बगितला में मैंने देखा कन्नड़ में हमारे स्कूल में हमारा एक छोटा सा एक कविता था, नोड़िद्दू सुळ्ळाग बहुदु केळिद्दू सुळ्ळाग बहुदु निधानिसि योचिसिदाग निजौ तिळियुदु. सुना हुआ चीज गलत हो सकता है, देखा हुआ चीज भी गलत हो सकता है, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब समझ में आएगा. कौन सा कहानी है मालूम है, वो औरत रहती है हाँ, उसको एक मंगूस मेवला नेवला उसको पाली रहती हो हाँ. तो एक दिन जाती है बाहर और आती है तो देखती है वो पूरा खून खून गिरा हुआ है घर के बाहर और वो नेवला के मुंह में सब खून है. तो एक डंडा लेके मार देती है उसको, खत्म कर देती उसको जान से. बोला अरे इतना मैंने पाला, यही किया तूने मेरे बच्चे छोटे बच्चे को रख के घर के घर में उसको रखवाली के लिए दे के गए. बोले मार दिया तूने उसको. फिर अंदर जाके देखती है वहां मरा हुआ सांप रहता है. तो सांप मारने को आया रहता वो, तो सांप बच्चे को मारना आ रहता है. तो ये औरत मतलब ये जो नेवला है वो सांप को मारा रहता है, तो उसका खून रहता है वो. तो बहुत भौतिक रूप से भी कितना जल्दी हम लोग एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं किसी के ऊपर एक मत बनाना. न केवल हमने बनाया पर थोप भी देते हैं और हजार लोगों को सुना भी देते हैं. एक बार एक प्रभुपाद जी के गुरु भाई वो कह रहे थे कि इस्कॉन डिवो